इससे खूबसूरत भी कोई पारा होगा, और दिल में जवाब यही आता है कि हर पारा ही अपनी मिसाल आप है। यही मुहावरा है, अपनी मिसाल आप और मैं ये कह सकते हैं कि हर पारा ही अपनी मिसाल आप है। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांग के। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दौरे कुरान 2020 2020 पारा नंबर 22 22 वमई यकनुत। पहला लफ्ज़ ही देखिए, हर पारे की तरह ये भी पारे का पहला लफ्ज़ है जो सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 31 है, उसका स्टार्ट है। लेकिन मैं रात को गौर कर रही थी कि इस पारे का मतलब क्या है। वाह और मन जो यकनुत, कनूत इख्तियार करेगी, फीमेल का सीगा है। यानी इस पारे को पढ़ने से पहले और सुनने से पहले और पढ़ाने से पहले एक दुआ कर लीजिए कि अल्लाह इसमें जो हुक्म मैं सुनूं मुझे उसको कनूत के दर्जे पे मानने वाला बना दे। और लफ्ज़ कनूत में दो लफ्ज़ हैं, अगर आप डिक्शनरी में जाकर देखना चाहें तो देख सकते हैं, आजजी और दवाम। आजजी तो हम समझते हैं बींग हम्बल, यानी अमल भी करना है और साथ आजिज भी रहना है। ये नहीं कि अमल करते हुए गुस्से में और पाँव पटकते हुए, क्या मुश्किल शरीयत, क्या मुश्किल हो गई ज़िंदगी जब से कुरान पकड़ा, झगड़े नहीं ख़त्म होते, ये वो। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला आप में से मेरे में से किसी को भी इस नाशुक्री की तौफीक ना दे। तो ये दुआ करनी है कि अल्लाह इसके हर हुक्म को सुनते मानते वक्त मैंने आजिज़ रहना है। और दूसरा लफ्ज़ होता है कनूत के अंदर दवाम, एवर लास्टिसिटी, ऑलवेज। अल्लाह के नबी की बड़ी प्यारी हदीस है कि जब सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह को बंदे का कौन सा अमल अच्छा लगता है, तो दो लफ्ज़ों की बात है, फरमाया अद व मुहा व इनकल्ला, जिस पे दवाम हो चाहे वो अमल छोटा सा हो। मसलन जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दो नफिल जो वज़ू से पहले अदा करते थे, वही है उनके जन्नत में कदमों की चाप बन गए। तो याद रखिएगा, आज के दौर में तो इसकी बहुत ही ज़रूरत है कि हम जो काम करें उसको पूरी पाबंदी के साथ करें, जिम्मेदारी के साथ करें। इधर उधर उलझे भुलझे काम दीन नहीं होता, आगा दौड़ पीछा चौड़ दीन नहीं होता। और इसी तरह से बहुत सारे काम शुरू करके उनको अधूरा छोड़ देना, ये दीन नहीं होता। और जब तक किसी काम पे जमेंगे नहीं, फिर ऊपर के फ्लोर नहीं बनेंगे। तो कनूत का ये लफ्ज़ दवाम, बेस है, फाउंडेशन, बुनियादें। जितनी ज़्यादा बुनियादें स्ट्रांग होंगी, जमी होंगी, उस पे इतने ही ज़्यादा फ्लोर बना सकते हैं। 100-100 फ्लोर की भी एक एक बिल्डिंग आप आज दुनिया में देखते हैं। मैं अक्सर देख के सोच में पड़ जाती हूँ कि अगर ये ज़रा सी हिले तो किधर जाएगी। लेकिन जिन्होंने बनाई है उन्होंने कुछ सोच के बनाई है ना। तो जब हमारे अंदर कनूत आ जाता है, हम कोई भी काम करें, पढ़ें के पढ़ाएं, लिखें के लिखाएं, हम बच्चों को ही क्यों ना देखने लग जाएं किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ दूसरे लोग पढ़ रहे हैं और आप उनके बच्चों को देखते हैं कि मैं इनको बेबीसिट करती हूँ। दवाम के साथ कीजिए, क्योंकि आपका कभी होना और कभी ना होना इस बात का सबूत बन जाएगा कि आपके बगैर भी काम चलता है। हमेशा वही फल पकता है जो दवाम के साथ, दरख्त के साथ चिपका रहता है। कई दफा तूफान और आंधियों में गिरे हुए फल उठाकर आर्टिफिशियल तरीकों से पका तो लिए जाते हैं, लेकिन वो खूबसूरत नहीं होते, टेस्ट नहीं होता, ना रंग वो, ना ढंग वो, ना खुशबू वो। तो कनूत के साथ इस इल्म के सफर पे जमे रहिए, फिर देखिए अल्लाह ताला आपसे क्या करवाता है। मैंने तो जिंदगी में यही देखा, अगर कोई पूछे कि कामयाबी किस चीज का नाम है, तो मैं कहती हूँ ट्रेन का नाम है। एक पायलट और एक आगे इंजन चलाने वाला, और इंजन जिसको आप और मैं देख सकते हैं, 10 बोगियां लगा लीजिए या 100 लगा लीजिए, पटरी एक है और इंजन एक है। ये है वो चीज जो उम्मते मुस्लिमा को इस वक्त पढ़ने और समझने की है। हम बिखरी हुई हवाओं में उड़ी हुई नेकियां करते हैं, अल्लाह ना करे हबा मंसूरा बन जाए या हबा मम्बस्सा बन जाए। तो कनूत सीखना है इस बारे में से हमने, बहुत ही अहम नुक्ता है ये सीखने वाला और सिखाए जाने वाला। अगर हम इसको सीख और समझ सके, फिर आप देखिए कि फितनों का दौर है, और फितनों में आप और मैं अपने आप को अगर देखते हैं, तो इस बारे का टॉपिक लिखिए, तबर्रुज का फितना। कुछ लोगों को तो अभी नहीं समझ आएगा कि तबर्रुज क्या होता है, लेकिन खुदनुमाई का फितना, सेल्फ प्रोजेक्शन का फितना, किस तरीके से एक इंसान इन सारी चीजों में अपने आप को लेके आ सकता है, ये सारी चीजें अगर एक इंसान अपने ऊपर गौर करता रहे तो उसको समझ आ जाएगा कि आज के दौर में क्या फितने हैं। और उन फितनों में एक बहुत बड़ा फितना ये है कि हर एक खुद को नुमायां करना चाहता है, खुद को बड़ा करना चाहता है। सजने का संवरने का शौक तो हर दौर में था। दौरे जाहिलियत की जो मिसाल इस बारे में आप और मैं देखेंगे अभी शुरू में ही आ जाएगी आयत 33 में, वक़र नफ़ी बुयूती कुन नवला तवर रुच न तवर रुजल जाहिलियतिल उला। तो औरत बने संवरे ही उसका हक है, लेकिन बन संवर कर दूसरों को जलाना, तकाबुल में खुद को लाना और इसी तरह से ये सोच लेना कि कोई हमसा हो तो सामने आए, सोचने की बात है। ऐसे वक्त में बात समझ में आती है कि किस तरीके से एक इंसान अपने आप को लेकर चलता है। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि हम बेहतर तरीके से इन चीज़ों को करें। और बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। आप लोग सब सोचिए ज़रा, देखिए मैं और आप जो चीज़ें कर रहे हैं ना, जो सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कब मैं और आप कनूत के दर्जे पे दीन को लेंगे? चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं। कितने साल से मैं मुसलमान हूँ लिखिए, कितने साल हो गए मुझे नमाजें पढ़ते हुए, ये मेरा कितनवा रमदान है, ये मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने मुझे दी। और हर दफा ही अल्लाह ताला मुझे फिर मौका दे रहा है, फिर लेकर चल रहा है। जितना ज्यादा आप और मैं इस चीज के ऊपर अपने आप को लेंगे ना, उतना हमारा दिल खुलेगा। देखिए क्या हम सिर्फ रस्मन तो नहीं पढ़ रहे, क्या दारे कुरान आदतन तो नहीं कर रहे या इबादतन कर रहे? कभी अकेले में बैठ कर ना सोचिएगा कि आखिर मैं जो भी दीन के नाम पर अल्लाह की इताअत और कनूत का दावा करती हूँ, क्या हकीकत में यही है? क्या वाकई रियली आदत तो नहीं होगी नमाज पढ़ने की? क्योंकि आप देखिए कि जिस तेजी से ये तबरुज का फितना आज फैलता हुआ दिख रहा है, और ये जो पिछले चंद साल जिसमें हाथों में फोन आए वो तो शुरू से ही थे, 20 साल पीछे चले जाइए तो शायद फोन थे, हाथों में सेल फोन, मोबाइल कहते थे उस वक्त। लेकिन जब से इसमें नेट आ गया, आज भी मुझे वो दिन याद आता है कि जब मेरे कानों ने पहली दफा सुना कि अब ऐसा फोन आ गया जिसमें इंटरनेट होगा, तो मैंने एक शान बेनियाजी से मुस्कुरा के कहा, लो कौन देखेगा। इतनी सी फोन की स्क्रीन, उस दौर में बिल्कुल एक कह लीजिए कि 2x3 की स्क्रीन होती थी, शीशे की या प्लास्टिक की, और नीचे उसके बटन्स होते थे और पूरा फोन आपकी उंगली के साथ हो जाता था। अब होता क्या है कि जब आप इतना छोटा फोन देखें तो उसमें नेट कौन होगा। अगर उस वक्त में ये भी याद रखें कि कंप्यूटर्स मोस्टली डेस्कटॉप पे होते थे, यानी इवन लैपटॉप भी बड़े रेयर रेयर थे, तो मैंने सोचा कि ये मेरे जैसा बंदा तो कभी ना पकड़े उसको, कौन ढूंढे, किधर जाए, क्या करे, दिस एंड दैट। और उसके बाद क्या हुआ जो आज आपके मेरे सामने है। नेट तो आ गया फोन में, लेकिन फोन की स्क्रीन बड़ी हो गई। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि असली साइज से शायद 3-4 गुना बड़ा फोन हो गया। उसके बाद से ये चीज बहुत आम हो गई। तबर्रुज का फितना साइंसी तरक्की के फितने के साथ खुलकर सामने आ गया। पहले दौर में लोग किसी के घर जाते थे तो किसी को देखते थे, आज के दौर में जाने की जरूरत नहीं है। लफ्ज तबर्रुज अगर आप देखें ना, तो बारा जीम, बुर्ज, बराजा। सोचने की बात है कि आप और मैं किससे बड़ा बनना चाहते। बुर्ज तो सुने ना, जब किसी भी औरत में खास तौर पे ये जज्बा ज्यादा होगा, ये तो कुरान ने भी यही कह दिया। आप और मैं इस चीज को सोचें तो फिर हमें बात समझ भी आएगी कि किस तरीके से हम अपने आप को नुमाया करना चाहते हैं। देखिए आसमान ऊंचा अच्छा लगता है ना, जमीन नीचे अच्छी लगती है। आसमान को जमीन पे लाएंगे और जमीन को ऊपर ले जाएंगे तो कियामत होगी। यही है वो कियामत जो आज के दौर में बरपा है। ये है वो कियामत जो आज इस दुनिया में आ गई, जो लोगों के दिलों पे टूटती है जब लोग अपने हुसन के बेजा इजहार के साथ खुद को नुमायां करते कराते तबरुज का इजहार करते हैं। ये वो तबरुज है जिसने आज दुनिया को सेल्फ कॉन्शियस बना दिया। वही बात है कि जैसे कुरान में क़यामत की चीज़ों में से एक चीज़ आती है ना, वइज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा वअख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा वक़ाला अल-इंसानु मा लहा। क़यामत की निशानी तो है कि आसमान टूटेगा और ज़मीन हिलेगी, और आसमान ज़मीन बन जाएगा और ज़मीन आसमान बन जाएगी। इज़ अस-समाउ इंशक्कत और वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, तो औरत और मर्द की जो अल्लाह ने हदें रखी थी, जो चीज़ें रखी थी, उन सब को अगर एक इंसान अपने सामने रख ले तो बात समझ आती है। तो तबरुज का फितना क्या है? एक औरत अपने हार सिंगार को नुमाया करे। देखिएगा ज़रा डिक्शनरी की रोशनी में इससे क्या मुराद है, जो आपके मेरे लिए काबिले गौर नुक्ता है। बारा जीम बुर्ज है, तबरुज में तकल्लुफ है। अरबी में कहते हैं सौबुन मुबर्रजुन, उस कपड़े को जिस पर बुर्जों की तस्वीरें बनी हों। शायद कल तक नहीं समझ आती, आज समझ आ गई। सोचिए जरा, कल तक ये बात मुझे तो समझ ना आती, अगर आज मैं इस चीज की चश्मदीद गवाह ना होती। आज के दौर में देखिए कि वो कपड़े जिन पे तस्वीरें बनी हुई, वो कपड़े जिस पे पूरे पूरे घर बने हुए, जंगल नुमा घास फूस उगी हुई और बीच में कीड़े मकोड़े। आज के दौर के कपड़े आपने देखे ही होंगे, स्पेशली ब्रांडेड कपड़े। हजारों रुपए की एक एक कुर्ती, क्या वो तबरुज का इजहार नहीं है? लोग पहले कपड़ों पर तस्वीरें लगाते थे बच्चों की, कोई कार्टून, कोई फ्रूट, कुछ भी। आज बड़ी समझदार संजीदा औरतें, और अफसोस उस वक्त होता है जब नमाज पढ़ने के वक्त वो उन्होंने देखा, हाय इसमें तो तितलियां हैं, हाय इसमें तो बर्ड्स बने हुए। और इसके बाद एक तो ऐसा था कि मैंने अपनी आंखों से देखा, दर्स से फरागत के बाद नमाज अदा हो रही थी तो एक सिस्टर अपनी छोटी सी शर्ट में मलबूस थी, जब नमाज पढ़ने लगी तो पीछे वाली ने चीख के कहा, अरे तुम्हारे कपड़े पे मकोड़ा चढ़ गया। गौर से देखा तो वो मकोड़ा चढ़ा नहीं था, वो उसके ऊपर बना हुए थे। फिर तो देखा तो अगला हिस्सा कीड़ों से भरा पड़ा। जरा सा सोचिए तो सही, ये क्या है? सारी कोशिशें करके देख ली, लोग हमें बड़ा करें, अब हम इस तरह बड़ा बनेंगे। देखिए, शोहरत या मशहूरी या नजरों में आना या प्रोमिनेंट होना, ये सब कुछ इसके अंदर आपको दिख सकता है। जरूरत इस बात की कि हम थोड़ा सा तो सोचें। देखिए, होंठ पे लिपस्टिक लगती थी हमेशा, सुर्ख नहीं तो गुलाबी, या फिर इसी के कोई शेड, रेड को मैरून कर लें और पिंक को आप शॉकिंग पिंक कर लें। नेचुरल है, क्योंकि नेचुरली होंठ पिंक होते हैं, रेड होंगे या पिंक होंगे। इसके बरक्स आज काले रंग की लिपस्टिक, ग्रीन कलर की लिपस्टिक, दांतों में आप मटर के दाने फंसा कर बैठे हुए। देखिए, मैं कोई तकल्लुफ नहीं कर रही इस वक्त बोलने में, मैं वही कर रही हूं जो मुझे इस वक्त कहना चाहिए। आज का पारा पढ़ाने से पहले मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आप कहेंगे आप तो रोज ये दुआ मांगती हैं, लेकिन आज मैं अपने आप को बिल्कुल अल्लाह के सहारे पे छोड़ रही हूँ। और वो क्या कि मेरी जुबान से आज वो निकालना जो मेरी बहनों और हमारी बच्चियों को समझ आ जाए। फैशन के नाम पे, ट्रेंड्स के नाम पे, ब्रांड्स के नाम पे अक्ल तो इस्तेमाल करो, होश तो लाओ। वो कपड़ा जिस पे तस्वीरें बनी है, नमाज होगी? वो कपड़ा जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े मोर और पंख बने पड़े हैं, क्या वो आपको एक इंसान बना रहा? टेस्ट बड़ी प्यारी चीज होती है, डिसेंसी के साथ आप अच्छे कपड़े पहने। लोग कहते हैं कहाँ से लिए हैं, आप कहते हैं कहीं से नहीं लिए, खुद ही बनाए हैं। अच्छा, लेकिन जब हम बगैर सोचे सौब मुबर्रजुन को ढूंढने निकलते हैं ना, सिर्फ इसलिए कि एक ने पहन के दिखा दिया स्क्रीन पे और बड़ी प्यारी चाल चल के दिखा दिया कैसी लगती हूं मैं ये कपड़े पहनकर, तो हमारी सिस्टर्स को इस पे गौर करने की जरूरत है। और मैं सिस्टर्स की ही बात करती हूँ, मुझे ब्रदर से कुछ ज्यादा गिले नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो इतने सेल्फ कॉन्शियस नहीं है जितनी आज हम हो गई। काले रंग के नाखून किसके होते थे, कभी सोचा? लंबे लंबे नाखून, ब्लैक कलर, क्या आज आपको ये मुबर्रजुन की कैफियत नहीं दिखती? यानी बाल, चलिए काले बाल, मैरून बाल, सुर्ख थोड़े थोड़े रेडिश, नॉर्मल थे। कोई मेहंदी लगाता था उसके बाल सुर्ख हो जाते थे, और कोई काली मेहंदी लगाएगा तो काले होंगे। थोड़ा सा लाइट डार्क शेड्स देकर आप कुछ भी बालों में शेड डलवा ले। कभी आपने ग्रीन बाल देखे थे? आप कहेंगे जी देखे हैं, तोते के होते हैं। क्या आपने कभी भी किसी के बालों को गुलाबी रंग का देखा था? हम तो भाग जाएं देखकर ऐसे किसी फर्द को कि जिसके बाल नीले पीले खट्टे काले हों। तो मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक तबरुज समझ आ चुका होगा। अरब लोग कहा करते थे तबर्रजतिल मरआ, औरत ने मुजयन कपड़े की तरह आराइश का इजहार किया। जैसे मेकअप होता है ना, ये डेकोरेट करना, तो जब औरत बहुत ही सजे संवरे कपड़े पहन के आराइश करे तो अरब लोग ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे। फिर इसे तबरुज यानी बुर्ज, जाहिर और नुमाया होने के मानों में इस्तेमाल होता। बस औरत के लिए जायज नहीं है कि वह अपने हुस्नो जमाल, चाल ढाल और जेबो जीनत को नुमाया करे कि गैर मर्दों की निगाह पड़ सके। और इस पे एक कौल जो मैंने बहुत शुरू में पढ़ा, और तफसीर इब्ने कसीर में आज भी होगा, इसमें तो मैं अपनी नोट नहीं कर सकी, लेकिन वो कौल मौजूद है तफसीर इब्ने कसीर में, या इमाम मुजाहिद का या इमाम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का। कहते हैं कि जब एक औरत सामने से आ रही होती है ना, तो शैतान उसकी पेशानी यानी फोरहेड पे बैठता है और सामने से आने वालों को कहता है, इसके चेहरे को देखो, चेहरे को देखो। और जब औरत जा रही होती है और देखने वाला पीछे से उसको देख रहा है, तो वो उसके हिप्स पे बैठता है, थाईस पे, और कहता है देखो। इसीलिए आप देखिए, जब सामने से कोई आए तो उसके चेहरे पे नजर पड़ती है, और जब पीछे से आए तो क्या होता है, ये आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से उनके साथ ये मामला होता है। तो क्या पता चला कि ये सारी कोशिशें सिर्फ इस मुसीबत की हैं कि मुझे देखो, मुझे देखो। तो तबरुज क्या है? मुझे देखो, प्लीज देखो ना, प्लीज। मैं छोटी थी, मैं बड़ी बन के दिखाती हूँ, कद आवर तस्वीरें, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स। एक औरत का ज्यादा से ज्यादा कद शायद 6.5 होगा, नॉर्मली हमारे कल्चर में तो इतना ही होता है ना, ये भी बहुत अनयूजुअल है, 6 लगा लीजिए। और जो बिल बोर्ड किसी कपड़े बेचने वाले ने, किसी जूते बेचने वाले ने, और किसी सेफ्टी रेजर बेचने वाले ने, और चाय की पत्ती बेचने वाले ने, और इल्ला माशाल्लाह अल्लाह हिदायत दे, उस पे जो औरत लगाई हुई है, जाकर प्रिंटिंग प्रेस वालों से जरा साइजेस चेक कीजिएगा। 200-200 फुट लंबे बैनर्स आज आपके मुल्क की बिल्डिंगों पे हैंग हुए हैं, और वहां से सब गुजरते हैं, इल्म वाले भी गुजरते हैं, फिक वाले भी गुजरते हैं, तकवा वाले भी गुजरते हैं, वहां से माली बाबे चौकीदार ड्राइवर भी गुजरते हैं, और आपके बच्चे भी गुजरते हैं। हो क्या गया उम्मते मुस्लिमा को? आज अल्लाह ना करे मेरी आवाज ऊंची हो जाए, मेरे लिए दुआ करिए। इतना दर्द है मेरे दिल में इस चीज का। सहाबियात जो इल्म की महफिलों में और इल्म की खिदमत करके इज्जत और नाम कर गई ना, वो आज की औरत ने तबर्रुज का इजहार करके अपने आप को पेश कर दिया, और फिर यही किया जो कि लोग करते हैं, किस तरीके से अपने आप को लेके चलते हैं। आप बताइए कि आपके सर के ऊपर कई 100 फुट लंबी औरत खड़ी कर दी जाए, और जो ही ड्राइवर वहां से गाड़ी मोड़ेगा उसकी जान ना निकल जाएगी। हादसा तो होते हैं, मैं वो बिल्डिंग्स के नाम तक दे सकती हूँ, जो लोग रहते हैं वो जाकर देख सकते हैं। चूंकि पाबंदी कोई नहीं, नॉर्वे वाले तो अल्लाह जजाय खैर दे नॉर्वे हुकूमत को, आपको एक शायद 1 से 2 फुट से लंबी कोई चीज नहीं लगाने देते अपने नाम की, बाय शिल्ट जिसको आप कहते हैं। 1 फुट भी हो तो बड़ी बात है, एक छोटा सा साइन लिखा होता है, पर हमारे अपने स्कूल में छोटा सा नूरुल कुरान लिखा हुआ है। पूरा शहर जाकर देख लीजिए, आपको कपड़े जूते बेचने वालों की दुकानों पर इतने बड़े बैनर नहीं दिखेंगे जो आज हमारे मुल्कों में। और मुसलमान बेटी है उधर, और मुसलमान माँ है, और मुसलमान बहन है, क्योंकि किसी की तो है ना। और जब इतनी आदत हो जाए टूथपेस्ट के इश्तेहार को इस तरह देखने की, और फिर वही कहूंगी कि वो चीजें जिसमें औरत का कोई दखल नहीं है, सेफ्टी रेजर से औरत का क्या काम, लेकिन वो पास खड़ी पकड़ा रही है कि ये जरा आप फुलां फुलां कीजिए। तबरुज ने औरत को बिकाऊ चीज बना दिया, ये तबरुज है जिसने औरत को इतना सस्ता कर दिया। देखिए, पहले औरतें बिकती थी, जिस्म बेचती थी, शहर के कोने में कोई बड़े खुफिया जगह होती थी जिसको कोई कोठा कहता था, तो कोई किसी को बाजारे हुसन कहता था, वहां कौन जाते होंगे, चंद जाते होंगे बड़े ही दुखे मारे हुए, गमों के या बिगड़े हुए लोग, बच्चों बूढ़ों जवानों को तो उसकी खबर ना मिले। तसव्वुर में नहीं था कोई उन बाजारों को जाए कि बाजारे हुसन में कोई जाए, शरीफ जाए। आज कौन जाता होगा? मेरा ख्याल है उनका भी बिजनेस डूब चुका, क्योंकि बाहर तबर्रुज है, सबको देखना पड़ता है। जलते हुए जाए आप दर्स देने जा रहे हैं, जलते हुए जाए आप सुनने जा रहे हैं, आपके मियाँ बेचारे जॉब पे निकल रहे हैं, मर्द कारोबार के लिए निकल रहे हैं, फोन आ रहे हैं, मीटिंग्स होनी है, बैंक से कॉल करनी है, बैंक टाइम खत्म है, आपको चारों तरफ दिखा दे रहे, प्लीज मुझे देखो ना, देखो तो सही, एक नजर तो उठाकर देखो। और वो एक नजर क्या उठी, गाड़ी का हादसा हो गया। ऐसा हुआ बिल्कुल हकीकी वाकया, कि जब ड्राइवर ने गाड़ी हिट की और घर वालों ने बाद में आके पूछा, कहता क्या करूं, आगे सामने इतनी बड़ी तस्वीर थी, मेरी नजर चली गई, पता ही नहीं चला आगे क्या। तो ये औरत का जो मुझे देखो का फितना है ना, तो ये है। थोड़ा सा मजीद देखते हैं, कुरान कहता है, आगे आयत आने वाली है, उसी को एक्सप्लेन अभी कर रही हूँ क्योंकि मौजू बना हुआ है। बोला तबर्रुज न तबर्रुजल जाहिलियत इलूला, जाहिलियत में औरतें बेपर्दा फिरा करती थी, इस्लाम बेपर्दगी को हराम करार देता है। इसी तरह औरतें नाज से इठला कर चलती थीं, कमर पे हाथ रख के और जिस्म को घुमाते हुए चलना, इस्लाम ने इसको ममनू किया। इसी तरह गर्दन और कानों के जेवर दूसरों को नजर आने, ये जाहिलियत का बनाव सिंगार था। अगर आप कभी कैलाश वादी की कुछ तस्वीरें जहन में लाइए, काफ्रिस्तान, कश्मीरी खवातीन, जो बड़ी ओल्ड टच देती हैं पिक्चर्स, तो आप देखिए कि पूरे सर के ऊपर बाल कट्ठे किए, जूड़ा सा बनाया, फिर एक पतला सा जो भी एक दुपट्टा या स्कार्फ सर से लपेटा, ऐसे कि पूरा सर बाल छुप गए, और उसको पीछे जाकर बल देकर टाई अप कर देती थी। इसको उस दौर में लोग तबरुज कहते थे, यानी ओढ़नियों को सीनों पर डालने की बजाय, जो पीछे पड़ चुके कि बी हुमरी हिन्ना ला जियू बी हिन्ना, इसकी बजाय बाल छुपाती थी और उसके बाद पीछे करके बांधती थी। उस पे ये हुक्म आया था कि वो लौंडियों का तरीका था, कहा नहीं तुम इन चादरों को अपने जिस्मों पर डालो। और आज भी इसी पारे में आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, युद्नी नाली हिन्न मिन जला बी बी हिन्न, सूरत अलहज़ाब के बिल्कुल अट के करीब है। ये सारा कुछ इधर ही समझ लें, अल्लाह ने रोका कि आज हम मुसलमानों में ये चीजें आई। देखिए अरबी में तबरुज के मानी नुमाया होने, उभरने और खुलकर सामने आने के हैं। मेरा सवाल है आपसे, इन चारों पॉइंट्स को सामने रखकर खुद से पूछ लीजिए कि आज भी औरतें बेपर्दा फिरती हैं, तो फिर कहाँ गया ये हराम का लफ्ज? कि आज भी गर्दन और कानों के जेवर दिखाने के लिए इवन वो दुल्हनें जो बड़े एहतमाम से स्काफ भी करती हैं आम दिनों में, उनको इस तरह का स्काफ उड़ाया जाता है कि कानों के बुंदे, गले का हार सब घुलता है। और समझ मुझे कभी नहीं आई कि आपका जोड़ा पांव से लेकर सर तक दिख रहा है, और आप खुद या भाई की शादी के मौके पे एक छोटा सा निकाब भी चेहरे पर डालते हैं, लेकिन गर्दन से लेकर पांव तक हाथ गर्दन सब दिखता है। क्या किया हम मुसलमानों ने, मुझे नहीं समझ आता ये बिगड़ कहाँ से गई, ये समझ नहीं आता। तो क्या दूसरा सवाल कीजिए कि आज नाज से इठला कर चलती हैं लड़कियां? देखिए ना, बिल्ली चले तो अच्छी लगे, और औरत अगर बिल्ली की तरह चले तो क्या लगेगी, वो बिल्ली भी नहीं लगेगी, अल्लाह माफ करे हम सबको। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जब तबरुज आता है तो उसके साथ ही एक लफ्ज जहन में रखिए कि ये जाहिलियत का कल्चर है। हम ऐसे लोगों को टू बी मॉडर्न होना कहते हैं, इस्लाम ऐसे लोगों को जाहिल कहता है। ये बातें हमने छठे पारे में भी की थी, मैं इसलिए आपको रेफरेंस देती हूँ कि अगर कुछ बातें वहां से जाकर दोबारा नोट करना चाहें तो करिए, लेकिन एक खुलासा है। आप देखिए कि बीच में इस्लाम है, इस्लाम से पहले वाले दौर को जाहिलियत उला कहते हैं, जो यहां भी आ रही है बात, वला तबरचना तबरुजल जाहिलियत लूला। तो इस्लाम से पहले की एक जहालत थी, फिर इस्लाम आया, सारी जहालत खत्म की गई अल्लाह के हुक्म से, और फिर जाहिलियत उखरा आ गई जो आज दिखती है। ये है इस्लाम के बाद की जहालत, दौरे हाजिर का फितना। वहां आपको चार तकाबुल में चीजें लिखाई थी, आज भी है। तो जाहिलियत इस्लाम से पहले भी थी, आज भी है, जो कल था वही आज है। और इसकी वजह क्या हुई कि हम इस प्यारे इस्लाम और इस प्यारे दीन से दूर हो गए? देखिए 10 किताबें पढ़ी हो घर में, खोले ना, मट्टी पढ़ती रहे सारी जिंदगी, वो अपने घर में पढ़ी रहे, आप डॉक्टर बन जाएंगे? कि चूंकि आपके पास बुक्स हैं मेडिकल की तो आप डॉक्टर बन जाएंगे? बेकार बात है ना, समझ में आने वाली बात है। कौन जाने कौन माने आपकी इस बात को, नहीं मान सकते, इट्स इम्पॉसिबल, आप नहीं समझ सकते इसको। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिएगा कि जो नाखूब था वही खूब हुआ, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। कौमें बदल गई, आज हम बदल गए, आज के बाप भाई बेटे की नजरें बदल गई माजरत के साथ। बेटियों को जिन हुलियों में आज बाप भाई देखते हैं, हम तो तस्वुर नहीं कर सकते थे इसका। बाहर वालों से पर्दा क्या होता है इसको कौन जाने। अभी तो हम इस गम का शिकार थे कि हमने घर वालों के सामने क्या करना, दादे के और नाना के आते हुए घर की छोटी छोटी बच्चियों का हाल होता था, वो आपने सबने देखा होगा। सुसर से पर्दे करती थी हमारी खवातीन, क्योंकि उनके पास इल्म का शऊर था, उनको पता था कि इल्म क्या करता कराता, इल्म के साथ क्या दौलतें हैं। तो देख लीजिए, हमने इस कुरान के पानी से अपने आप को और अपनी नस्लों को महरूम रख के कितना जुल्म किया। अल्लाह करे आप मेरे दिल के इस दर्द को महसूस करें, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि आई एम गोइंग टू बी जजमेंटल। वल्लाह ही ये वो दर्द है, जैसे नीचे आग जलाएंगे तो वो सेक तो निकलेगा ना, धुआं तो निकलेगा। आज इस पे दीनदारों को बात करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने सूरत मायदा में कहा, लौला यनहाहुम, क्यों ना रोका इनको इनके बुरे कामों से इनके रिब्बियों ने और इनके उलमा ने। आज हमने बहसों में पढ़कर एक एक मसले की तो धज्जियां बिखेर दी कि ये फर्ज है कि सुन्नत है कि हलाल है कि हराम है, लेकिन हमारे इर्द गिर्द आज फिर वही जाहिलियत है। एक बार फिर देख लीजिए वो सीन जो हमने छठे पारे में भी देखा था कि जाहिलियत और इस्लाम, चार किस्म की जाहिलियतों का कुरान में तذکرہ। एक है जन्नल जाहिलिया, ये आगे आएगी बात सूरत फतह में। जिस दिन ये टॉपिक पूरा होगा आपको ये पूरा जायचा समझ आ जाएगा। फिर हमीयतुल जाहिला, सबसे पहले परसेप्शन जाहिल होता है, अन इस्लामिक थॉट्स को आप प्रमोट करते हैं और खुशियां मनाते हैं उस पे। फिर इसी तरह से इसके बाद क्या होता है, हमीयतुल जाहिलिया, फिर आप हिमायती बन जाते हैं जाहिलियत के, आपको वो कल्चर अच्छा लगता है, फिर आपको मुसलमान बड़े ही बुरे लगते हैं, और लफ्ज़ मौलवी तो फिर जहर ही लगता है कि ये कैसी बातें करते हैं और फनेटिक और ये और वो और इस तरह की बातें। सोचने की बात है, अपने आप को देखें हम इन चीजों में किस तरीके से, इन सारी चीजों को अगर आप लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगी ये बात। फिर उसके बाद आप देखिए कि हमीयत जब होती है ना तो हिमायतें फिर इस्लाम से नहीं होती। आज भी बड़े बड़े एंकर्स आपको दिखेंगे इस बात के लिए कि वो हिमायतें करते फिरते हैं जहालत वाले तरीकों को, और इसी तरह से। फिर तीसरा थे हुक्मल जाहिलिया, फिर हुक्म चलता है, गवर्नमेंट लेवल पे वो लॉज बनते हैं, हुकूमती सतह पे जहालत आने लगती है, फिर गवर्नमेंट के अंडर रहकर शिर्क और बिदअत की चीजें प्रमोट होती हैं, फिर गवर्नमेंट ही ऐसे लोगों को एनओसीस देती है कि जाइए आप जो मर्जी चैनल खोलिए और उसमें जो मर्जी फहाशी दिखाइए। आज जो मीडिया इतना आजाद हुआ ना, उसकी भी बहुत बड़ी वजह यही तबर्रुज है। इस तबर्रुज की वजह से ये सब कुछ हुआ, क्योंकि लोगों को इजाजतें चाहिए थी। किस तरीके से लोग इन चीजों को लेकर चलते हैं आप देख लीजिए। यानी आज के इस पारे को पढ़कर सिस्टर्स ने अपने आप से दुआ भी करनी है, नियत करनी है, वादा करना है कि जो बात सुनूंगी इस पे हुक्म भी मानूंगी। और एक दो दिन नहीं, सिर्फ रमजान में नहीं, सिर्फ उमरे पे जाकर नहीं, सिर्फ हज और फलां के साथ नहीं, बल्कि मैं इसको सारी जिंदगी के लिए अब मानूंगी। हर साल नियतें की और नियतें कर करके छोड़ दी, अब ऐसा नहीं करूंगी। और दूसरी बात है कि फिर इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला जमी रहूंगी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक। और जब इस तरीके से आपकी जिंदगी में खैर आएगी तो आप अपने आप को बेहतर से बेहतर की तरफ डाल देंगे। बाज लोग तबरुज के नाम पे उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमें ही देखिए, तो ये चीज तबरुज है, इससे अपने आप को दूर करने की जरूरत है। फिर उसके बाद देखिए कि तबरुज जाहिर और नुमाया होने को कहते हैं, तो औरत के लिए जायज नहीं कि वह अपने हुस्नो जमाल, चाल ढाल और जेबो जीनत को नुमाया करे कि गैर मर्दों की उस पर निगाह पड़े। इस पे आकर अगर हम आज के दौर की वो चीजें देखें जो हमारी ही सिस्टर्स के अंदर आने लग गई, तो वो चीजें हमारा दिल दुखी करने के लिए काफी हैं। अब सवाल है कि अल्लाह ताला का ये हुक्म जो हमारी आज की थीम आयत में आ रहा है 34 में, वला तबरुज न तबरुज अल जाहिलियत लूला, तो तबरुज क्या है कि जाहिलियत में औरतें बेपर्दा फिरा करती थी, इस्लाम बेपर्दगी को हराम करार देता है। नाच से इठलाकर चलने की आदत थी औरतों को, अल्लाह ने इससे मना किया। गर्दन और कानों के जेवर दूसरों को नजर आए, ये जाहिलियत का बनाव सिंगार था। और अरबी में तबरुज के मानी नुमाया होने, उभरने और खुलकर सामने आने के, ये है तबरुज। आज ये चारों चीजें आपको अपने इर्द गिर्द दिखेंगी। सवाल यही है कि आज भी औरतें बेपर्दा दिखती हैं आपको? देखिए, गैर मुस्लिमों को तो छेड़े ही कोई ना, वो तो जो भी करे, वो तो उसे पीछे वाले नंबर से हट गए थे इस पटरी से। हम सारी बात मुसलमान माँ बहन बेटी की करते हैं। क्या आज की बेटियां भी नाजों से अठलाती हैं? बिल्ली चले तो अच्छी लगे, एक औरत बिल्ली की तरह चले तो क्या लगेगी, वो बिल्ली भी नहीं लगती, कुछ और ना लग जाए। फिर इसी तरह गर्दन और कानों के जेवर दूसरों को नजर आए, ये जाहिलियत का बनाव सिंगार था कि आज दुल्हनों के पूरे पूरे जेवर नहीं खोल दिए जाते, एक छोटा सा स्काफ पहनाने के बावजूद जरूरत क्या है इतने तकल्लुफ की। और अरबी में तबरुज के मानी नुमाया होकर खुलकर सामने आने के। तो बात ये है, अगर आप देखिए आगे, तो इस्लाम से पहले भी जाहिलियत थी और आज इस्लाम के आने के बाद भी जाहिलियत है। इस्लाम से पहले की जाहिलियत इतनी खतरनाक नहीं थी जो आज की जाहिलियत है। तो आज के दौर का फितना इस्लाम के बावजूद जहालत, ये है आज के पारे का फितना। इस्लाम आने के बाद भी हम जाहिल हैं, ये है दौरे हाजिर का फितना, ये है पारा 22 का फितना, जिसकी एक शक्ल हमें तबरुज की शक्ल में दिखती है। बच्चा ना पढ़े पास तो नहीं होगा ना, पढ़ लिख कर बच्चा फेल हो जाए तो माँ बाप को गुस्सा आएगा, दवा नहीं खाई तो सेहत नहीं होगी, मान लेते हैं, तो दवा खा पी कर भी कोई मर जाए बीमारी की वजह से, ये है आज का फितना। आज हम नाम इस्लाम का लेते हैं, लेकिन हमने इस्लाम को उतना भी नहीं पढ़ा जितना के ड्राइविंग टेस्ट देते हुए ड्राइविंग को सीखते और पढ़ते हैं। तो ज़रूरत यह है कि हमारी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को एक किया जाए। हम जब इन दोनों में डिफरेंस पाते हैं और देखते हैं, और गैर जब हमें इस तरह मुख्तलिफ ही देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें ये कुरान नहीं चाहिए, हमें वो कुरान ला कर दो जिस पे तुम मुसलमान आज के दौर में अमल कर रहे हो, हमें उस इस्लाम की ज़रूरत है। फिर इसके बाद आप देखिए कि जो पारे की थीम हमने डिस्कस की, सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 33, वक़र नफ़ी बुयूति कुन्ना वला तवर्रुज ना तवर्रुजल जाहिलियत लूला वकीम नस्सला तवाती नस्जका तवाते नल्लाह व रसूलहू इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुस्खिबानकुम रिज्स अनकुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अपने घरों में टिक कर रहो, स्टे होम, और साबिक तौर जाहलीत की सी सजदच न दिखाती फिरो, नमाज कायम करो, जक़ात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह ताला तो ये चाहता है कि अहले बैते नबी से गंदगी को दूर करे और तुम्हें पूरी तरह पाक कर दे। तो क्या पता चला कि इस्लाम औरत को और माशरे को पाक रखना चाहता है। अभी जहां आयत आएगी तो वहां मजीद बात करेंगे। दुआ ले लेते हैं, करें क्या इस सारे मौजू को, यानी जिसमें हमने इस्लाम को छोड़ के जहालत को कबूल कर लिया, अल्लाह से एक दुआ के साथ माफ करवाते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाकी वल आमाली वल अहवाई। ए अल्लाह, बेशक मैं बुरे अखलाक, बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात से तेरी पनाह मांगती हूँ। ये सुनन तिरमिजी की रिवायत है 3591। उम्मे सलमा रदी अल्लाहु अन्हा इसकी रावी हैं। तो आप देखिए कि हमने तबर्रुज बुरे अखलाक में इख्तियार किया, गाली गलोच देकर और बहुत ही बुरे तरीक़े तखातुब इस्तेमाल करके, हंसना बोलना, एक औरत जितनी मर्जी पर्दों में छुपी हो अगर ठट्ठे मारती हुई हंसती बोलती गुजरेगी तो 10 मर्दों की उस पर नज़र पड़ेगी। तो ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जो हिजाब भी पहन लेती हैं लेकिन उनकी हरकतें छिछोरी हों, उनको इस दुआ से इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बुरे आमाल जो तबर्रुज का नतीजा होते हैं, ना मानते हुए ना चाहते हुए भी ये सब होगा, उससे पनाह मांगनी, और सबसे बड़ी बात बुरी ख्वाहिशात। तबर्रुज की ख्वाहिशात में से बुरी तरीन ख्वाहिश होगी कि मुझे बड़ा समझा जाए। हदीस बहुत ही स्ट्रांग है आज की, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई आलिम दीन हो जिसने कभी यह हदीस कोट ना की हो, क्योंकि इसका आप इनकार कर नहीं सकते, ये सही रिवायत है। और इवन आज की दौर की प्यूरिफाइड और रिफॉर्म्ड हदीसें जो नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्ला की तखरीज से निकली, उसमें 1326 नंबर की यह हदीस है। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नुम में जाने वाले दो किस्म के लोग अभी तक नहीं देखे। यानी अल्लाह के नबी के दौर में ऐसे लोगों का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन आपको वही के जरिए से आने वाले दौर के लोगों की बात बता दी गई। वो लोग जिनके पास गायों की दुमों की तरह कोड़े होते हैं और वो इनसे लोगों की पिटाई करते हैं, इशारा था जालिम हुक्मरानों की तरफ। और वो औरतें जो लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी, नेकिट, लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी, माइलातुन, इंक्लाइन करने वालियां, मुझे देखो वाला तसव्वुर, और खुद इनकी तरफ माइल होंगी, यानी मर्दों को लुझाने वालियां और उनकी तरफ कशिश महसूस करने वालियां। इनके सर बुख्ती ऊंटों की कुहानों की तरह होंगे, यानी सर के ऊपर एक हम्प होगा जैसे ऊंट का हम्प होता है। ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल होंगी, ना इसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि इसकी खुशबू बहुत दूर से ही महसूस की जाती है। जरा सा सोचिए, क्या आज वो दौर आ नहीं गया? अल्लाह के नबी की पेशन गोई सच साबित ना हो गई? क्या आज स्टिकी कपड़े, चिपके हुए पजामे, ये कपड़े हैं? ये तो खाल के ऊपर एक और खाल चढ़ा दी आपने। फर्क इतना है कि वो स्किन खाल थी तो इसको आपने काली, नीली, पीली, सुर्ख खाल में बदल दिया। दो हदें हमने पढ़ी थी पीछे सूरत अल अराफ पे इस मौजू पे, कि शफाफ ना हो और वसाफ ना हो, सी थ्रू ना हो कि अंदर से चीजें भी दिखें, और इतना टाइट ना हो कि जिस्म का वसफ दिखे। आज इसकी सूरत जाकर देख लीजिए, माँ ने भी वही शायद पहना और बेटी ने भी। और हया का जनाजा जब निकल जाता है ना, तो औरत बिल्कुल लिबास से आरी हो जाती है, दिल नहीं मानता कि कोई चीज छुप जाए जिस्म की। तो फिर माइल तो होंगी ना। आज महर्रमात में जिना है, कई लोग गवाही देते हैं, करें क्या? बहनों के लिबास अच्छे नहीं है, फिल्में देखकर लोग मुंह काले करते हैं, करें क्या? आउटलेट तो है नहीं अभी। और ये जो सर बुख्ती ऊंटों की तरह की कुहाने, इस पे मैं बड़े दर्द के साथ बड़ी मोहब्बत से उन बच्चियों को कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह नेकी आनी तो शुरू हो गई, दिल में हिजाब की अहमियत समझ आई और उन्होंने इस चीज का स्टैंड लिया कि इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज आई विल टेक अ स्टैंड, कि आई एम अ मुस्लिम गर्ल। अपनी पहचान चाहते हैं, जैसे सूरत नूर में कि यूरोप ना पहचानी जाओ कि तुम मुसलमान बेटी हो। लेकिन ये जो हम्प बनाकर पूरे पूरे जूड़े बीच में डालकर सर पे रख लिए जाते हैं, ये कतन गैर इस्लामी है। मैंने वो खुतबा भी अटेंड किया हुआ है हरम में, इमाम काबा रो रो के इस मौजू पे बात कर रहे थे। तो मैंने उस दिन ये बात समझ ली कि ये सिर्फ इंडो पाक कल्चर का ही अब हिस्सा नहीं बन गया, बल्कि इस वक्त तो सऊदीया में ये बात कही है तो मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल इशू है। तो क्या करना ऐसे हिजाब और निकाब को जिसके बाद आप फिर नुमाया होना चाहते हैं औरतों में जो मर्जी करें, और इसमें कसूर भी है। हमने जब लिबास और हिजाब की पाबंदियां आउट ऑफ द वे की ना, तो जब आप औरतों में भी अब हिजाब ही पहन के बैठेंगे और उसमें भी आप स्काफ ही पहनेंगे, तो फिर आपने स्काफ को सजाने, उसमें मोती भी लगाने, सितारे भी लगाने, फिर अपनी शक्ल को सजाने के लिए हम भी लगाने। औरतों में औरतें रिलैक्स रहे, आज आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह जहां आयत आएगी तो वहां से ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि जिन कपड़ों में आप घर में बैठे हैं आप उनमें बाहर नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ तो आपको ऊपर लेना ही पड़ेगा। तो जब हमने कुछ ना कुछ ऊपर लेना था वही अंदर भी पहनने शुरू कर दिए, तो वो ड्रेस बन गए। आज हमारे बाहर ड्रेसेस हैं, आज हमारे हिजाब जो है क्या खूबसूरत उस पर चीजें लगी हुई है, एक एक हिजाब कई कई हजार का। तो बात याद रखने की है, अंदर दिल बदलिए, हिकमत समझिए, आप क्यों अपने ऊपर इम्पोज करते हैं कि हर वक्त आप हर जगह एक ही जैसे दिखे। तो बहरहाल ये मौजू मैंने पहले माजरत कर ली थी कि दुखी टॉपिक है, दिल का दर्द है आज का पारा। देखिएगा पारे की झलकियां, हाइलाइट्स ऑफ दी पारा, और साथ साथ दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इसकी तौफीक भी दे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना सीखेंगे। बोलिए इंशाल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करना सीखना, कनूत में ये दोनों चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरे आपके लिए इसको आसान कर दे। फिर इसके बाद हम सीखेंगे कि सच्चाई की रविश कैसे इख्तियार की जाती है। जब सारा मुआशरा झूठ पे चले ना, तो आप सच पे कायम रहिए, ये है पैगाम। शर्मगाहों की हिफाजत करना सीखना है, अल्लाह की तरफ दावत देना सीखना है, कैसे अज़वाजे मुतहरात ने भी ये दावतें दी, अल्लाह से डर कर रहना है, अल्लाह ताला को क्यामत की घड़ी का इल्म है, इस एहसास के साथ जिंदगी गुजारनी है, और इसी तरह से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते करते अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है, अच्छे अमल करने हैं, हक पर होना है और फिर उस पर कायम भी रहना है, और अल्लाह की राह में खर्च करना है, हिदायत पर होना है और दूसरों को हिदायत की तरफ बुलाना है, और जिंदगी के धोखे में मुबतला नहीं होना, शुक्र अदा करना है, बिन देखे अपने रब से डरना है, नेकियों में सबकत ले जाना है, और अल्लाह ताला की सिफात के बारे में गौर व फिक्र करना है, और सबसे बढ़ के रसूलों की पैरवी करनी है, और इस बारे में हमें अजवाज मुतहरात की पैरवी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं टेक्स्ट के साथ। बात तो पूरी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, अब चलेंगे आयतों के साथ साथ। सूरत अल अहज़ाब आयत नंबर 31 से ये पारा शुरू होता है, 33 नंबर की ये सूरत है, 73 आयात हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما। और तुम में से जो कोई अल्लाह की और इसके रसूल की फरमा बरदारी करेगी और नेक काम करेगी, हम इसे अजर भी दोहरा देंगे, और इसके लिए हमने बेहतरीन रोजी तैयार कर रखी है। ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो तो नरम लहजे से बात न करो कि जिसके दिल में रोक हो वो कोई बुरा ख्याल करे, और हाँ कायदे के मुताबिक कलाम करो। अल्लाह के नबी की अजवाज के नाते से उम्मते मुस्लिमा की हर औरत, हर बेटी और बहन को पैगाम दिया गया। पिछले पारे में बात शुरू हुई थी कि उनका एक बड़ा जायज मुतालबा था, लेकिन जब अल्लाह के नबी की तरफ से इख्तियार मिला तो सब ने अल्लाह के नबी को ही चूज किया, और इसीलिए फिर अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने इसके बाद इन्हीं बीवियों तक रोक दिया। यहाँ बात मेरी आपकी है। देखिए, जो हाई लेवल पे लोग चले जाते हैं ना, जिसको आप कहिए कि नुमाया हो जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। आम औरत गलत काम करे, गलत हाल हुलिये में बाहर आए, लोग उसको इतना बुरा नहीं कहते, बल्कि अक्सर हमारे कल्चर में तो डिफेंड ही करते हैं कि हाँ हाँ हाय बेचारियाँ, हाय भोलियाँ भालियाँ, याद ही नहीं रहता कि कुछ ऊपर पहनना भी था, ऐसे ही निकल कर स्लिप्स में आ गई। लोग उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। लेकिन इस वक्त मैं और आप जो दीन के साथ जुड़े हुए हैं, नंबर एक आप दीन की तरफ बुला रहे हैं, दूसरी बात है कि आप दीन के नुमाइंदे हैं। किसी भी जगह जहां आपके नाम के साथ कोई दर्स, कुरान क्लास, आपका घर इस्तेमाल हो रहा है, आप किसी भी तरह पहचान बन गई ना, बस ये आते आपके मेरे लिए। हमें नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को भी लोग देखेंगे, जिसको आप कह लीजिए कि खुर्दबीने लगा लगा कर। कोई मुसलमान मर्द है, अगर उसका तारुफ दीन बन जाए, फिर देखिए बात बात पे उसकी दाढ़ी बीच में आएगी और उसकी नमाजें रोजे आएंगे। अगर वो जरा सा हेरा फेरी करे, कहेगा देखे दाढ़ियां रख के झूठ बोलते हैं, औरतों को ताने मिलते हैं, ये देखे मैंने देखा वो हिजाब किया हुआ था और गीबत कर रही थी, बस अब मैंने हिजाब नहीं करना। ये नहीं कहते कि मैंने गीबत नहीं करनी, हिजाब तो पहनना है। शैतान क्या कहता है, लो हम उनसे अच्छे, वो उनके दो बाल दिख रहे थे हिजाब में से, क्या फायदा ऐसा हिजाब जिसमें दो बाल दिखे। तो याद रखिए, आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं दीन का काम करते हुए, जिसका जो दिल चाहे आपकी तरह पत्थर फेंक जाए, जिसके सीने में इतना दमखम है ना, वो आए इस मैदान में। इमेजिनेशन में लाइए, एक बहुत सा बड़ा हॉल है, 500 लोग उधर बैठे हुए हैं, स्टेज पे 3 लोग बैठे हैं। मुझे बता सकते हैं कि उस पूरे हॉल में अगर कोई एक नजर में देखे सबसे नुमाया कौन है? स्टेज पे बैठा हुआ नुमाया। एक है तो बहुत ही हो जाएगा, अकेला ही है, दो तीन होंगे तो दो तीन पे नजरें लोगों की जाएंगी। बस आप अपने ऊपर ये एक लेबल लगा लीजिए कि अब मैं स्टेज पे बैठ गई हूँ, अब मेरा किरदार, मेरी गुफ्तार, मेरा अखलाक, मेरा दीन के साथ ताल्लुक लोगों के लिए मुझे रोल मॉडल बना देगा। लोग स्क्रीनों पे ही तो चमकते हुए चेहरों को मॉडलिंग करते हुए देख कर रोल मॉडल बनाते हैं। दूसरी बात, आप देखिए कि हमें अल्लाह के लिए ये कुर्बानियां देनी है। मैं सबको कहती हूँ सब पढ़ाएं, मसलन जैसे इस वक्त भी अगर हजारों लाखों लोग दीन सीख सिखा रहे हैं, आप बैक एंड पे काम करते हैं ना, कोई आपको नहीं देखता। इस वक्त हो सकता है कोई स्कार्फ उतार कर भी बैठ जाए, घर में बैठे हैं, कोई उसको नहीं देखेगा। लेकिन एक टीचर आकर अगर स्टेज पे बैठती है तो उसका क्या गेटअप है, उसका क्या हुलिया, उसके कपड़े कैसे हैं, और फिर सबसे बड़ी बात है उधर से उठकर बाहर जाती किस हाल हुलिये में। लेकिन आप अगर स्टेज पे आ गए या माइक पे आ गए तो बस समझ लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी 10 गुना बढ़ गई। अच्छा ये वही है, ये फुलां है, तो फिर आप अभी स्टेज पे मत आइए, ये काम वो करें। और उस्ताद बनना अल्लाह की बना, बच्चे माँ बाप को इतना फॉलो नहीं करते जितना स्टूडेंट्स उस्ताद के एक एक कॉल फेल को करता है, बल्कि आगे जाकर हम करेंगे इस पे भी थोड़ी सी बात कि वो उस्ताद से आगे जाने ही नहीं चाहते नेकियों में। नहीं, हमारे उस्ताद इतना ही करते हैं, हम भी इतना ही करेंगे। तो बहरहाल मौजू बड़ा दुखी करने वाला है। दूसरी बात देखिए, इसमें औरतों के आवाज के पर्दे की बात है। पहली बात ये कि औरत की आवाज पर्दा नहीं है, वरना अल्लाह ताला ये जुमला ऐसे तो ना बोलते ना, या यहाँ ऐसे तो ना होता ना कि फला तख्दान बिल कौल, ना नरमी पैदा करो अपनी आवाज में, क्योंकि कोई दूसरा दिल में कोई तमा ले जाएगा। तुम्हारी तो नीयत अच्छी है लेकिन दूसरे की तो नहीं पता तुम्हें कैसी है। फिर सीधी सी बात होनी थी, फला तकुल ना, औरत बोले ही ना, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। अगर औरतों की आवाज पर्दा कर दी जाती तो दुनिया का निजाम ना चलता। लेकिन अफसोस की बात है कि जो औरतों से गाने सुनते, जो औरतों के शोज देखते, औरतों से नाते सुनते, वो जब दीन की बात है कहते हैं हम औरतों की आवाज नहीं सुनते। बहुत अच्छी बात अपना सुनिए, किसी मर्द जिसके दिल में कोई तमा है उसको बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। हजारों मर्द मौजूद है माशाल्लाह, लेकिन अगर औरतों को औरतों में बात करने और उसको फैलाने के लिए बात करना पड़े तो बहरहाल औरत की आवाज उस तरह पड़ता नहीं। हमारा आधा दीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला से मिला। अल्लाह के नबी के दुनिया से जाने के बाद इस औरत को अल्लाह ने तकरीबन नस सदी तक उम्मत की उस्ताद बनाकर पेश किया, और बात भी यही है, जरूरत भी इसी बात की है। तो अल्लाह सुबहान तआला यहाँ इस इशू को नहीं खड़ा कर रहे कि आपने करना क्या, असल बात ये थी कि तुम अपने आप को बेहतर तरीके से रखो। फिर इसके बाद आप देखिए कि अगली आयत जो जरा कदरे डिटेल्ड आयत है हमारे लिए, जिसके ऊपर ही सारे अहकामात बेस्ड हैं। पहली बात है कि वक़र नफी बुयूतिकुन, और अपने घरों में करार से रहो, और कदीम जाहिलियत के जमाने की तरह अपने बनाओ सिंगार का इजहार ना करो। देखिए ये नहीं कहा कि बनाओ ना करो, नोट कीजिएगा, ये भी एक मजहबी शिद्दत पसंदी थी कि औरत सिंगार करे ही ना, और मेकअप करना तो हराम है, और वुजू तो होता ही नहीं, और लिपस्टिक लगा ली तो ये होगा, और दिस एंड दैट, ये भी जुल्म था। यहाँ बनाओ के सिंगार के इजहार की बात है, और नमाज अदा करती रहो और ज़कात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत गुजारी करो। अल्लाह ताला यही चाहता है कि नबी की घर वाली हो, तुम में से हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे, और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और रसूल की जो अहदीस पढ़ी जाती इनका जिक्र करती रहो। यकीनन अल्लाह ताला लुत्फ करने वाला खबरदार है। यहाँ दो चीजें हैं, एक तो वही जो तबरुज है जो पीछे से बात चल रही है, तबरुजल जाहिलियत लूला, यानी बेपर्दगी ना करो, जेब व जीनत का इजहार ना करो। कुरान ने वाजे कर दिया कि ये तबरुज जाहिलियत की पैदावार है, ये इस्लाम से पहले थी, और अगर आज भी कोई इसे इख्तियार करे तो वो मॉडर्न नहीं है, वो जाहिल है, चाहे कितना ही खुशनुमा और दिल फरेब नाम क्यों ना उसका रख दिया जाए। लेकिन आज के दौर में जो तबरुज का फितना हमें इन आयात में दिख रहा है, तो पहली बात देखिए कि मुखातिब अज़वाज मुतहरात हैं इधर, लेकिन मकसद पूरी उम्मत मुस्लिमा की औरतों को वॉर्न करना है। ज़ाहिर है कैसी इकामत हम तक आए ना। और कुछ लोग इन आयतों को कहते नहीं ये तो अज़वाज मुतहरात थी, तो फिर इसी सूरत के एंड पे देख लीजिएगा, ना सिर्फ बीवियों बहनों बल्कि हर उम्मत की औरत को अलग से भी मुखातिब करके इकामात दिए गए पर्दे के। दूसरी बात देखिए कि औरतों को अपने वजूद की हिफाजत का हुक्म दिया जा रहा है। यू आर प्रीशियस, यू आर जेम्स, कीमती चीजें हमेशा छुपाई जाती हैं, घरों में रखी जाती हैं, सोना चांदी लॉकरों में रखते हैं, और आर्टिफिशियल चीजें ड्रेसर्स पे सजा दी जाती है। तो अल्लाह ताला ने अगर ये हुक्म दिया है तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ हिकमत तो होगी। हाँ, हुक्म किया कि औरतों को ये कि मर्दों से बात करते हुए नरमी और लताफत वाला लहजा ना रखें कि किसी के दिल में बुरा ख्याल है, लेकिन क्या इसका अंत है कि बिल्कुल आर्टिफिशियली भद्दापन और मोटापन इख्तियार किया जाए, ये भी मुराद नहीं, वो भी एक तबरुज हो जाएगा। बी नॉर्मल, स्पार्ट चेहरा, टू द पॉइंट बात कीजिए। जरूरत है औरत मर्द घर में रहकर देखिए, बाहर वालों से आप बिल्कुल नहीं इंटरेक्शन करें। क्या घर में आपके शौहर के बाप भाई बहन नहीं है? नंदों के शौहर नहीं आएंगे? आपके अपने बहनोई नहीं होंगे? कैसे हो सकता है कि आप एक घर में सिर्फ महरमात को रखिए और दूसरा कोई ऐसी जगह, आपका महरम दूसरे का गैर महरम है? बस एक मर्द है घर में, उसकी बीवी भी है, बहन भी है और बेटी भी है। अब माँ का वो महरम एक खास हद तक है ना, बहन के साथ उसका और मामला है, बीवी के साथ उसका और मामला है, बेटी भी है। एक मर्द बेचारा किधर जाए, उसकी तो घर में चार किस्म के रोल हैं। तो लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि आप बिल्कुल अलग से औरत और मर्दों का कंपाउंड बना दीजिए कि ये विमेन पार्ट है और ये मेंस का है। फिर दूसरी बात देखिए कि खौफ इलाही से खाली दिल इन हिदायत को पसे पुश डाल देते हैं। खौफ मांगिए, यानी हमने अल्लाह ताला से ये नहीं कहना कि अल्लाह ताला ये क्या मसला है, हाँ ये करें ना करें, वो करें ना करें, बल्कि दुआ कीजिए कि अल्लाह वो खशियत दे। अल्लाह के नबी की सिखाई हुई दुआ है कि अल्लाह मुझे अपनी वो खशियत दे। अल्लाह मैंने असलु का खशियत तक मा तहूल भी बेनी व बेन मासीतिक, कि मेरे और मेरे गुना के बीच में आ जाए। और इसी तरह आप नमाज की आगाज की दुआ में नहीं तो मांगते कि अल्लाह मबाइद बेनी व बेन खताया या कमा बात तबीन अलमशरक़ वल मग़रिब, कि अल्लाह मेरे और मेरे गुनाहों के बीच में दूरी डाल दे। तो औरतों को जो हुक्म दिया जा रहा है अगला के बगैर जरूरत के घरों से ना निकलो, इसको थोड़ा सा समझिएगा। कर नफी बुयुतिकुन, मैं आज इसको पढ़ते हुए इंजॉय कर रही थी सुबह ही, कि कुरान कहता है वह कर नफी बुयुतिकुन, तो लोग कहते हैं कुरान बड़ा बैकवर्ड है। अगर आज इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए आज के दौर में लॉकडाउन योर सेल्फ, खास तौर पे आप देखिए कि आज लॉकडाउन का लफ्ज हुकूमत की तरफ से आए, कहते हैं कितनी समझदार हुकूमत है, इनको हमारी जान प्यारी है। आज आप देख लीजिए कि औरतों मर्दों को अलग कर दिया गया, शेकेंड से दूर कर दिया गया, आइसोलेशन का लफ्ज हो गया, दूर दूर रहें, हत्ता कि अगर नमाजें भी पढ़नी है तो दूर दूर खड़े किए जाएं, मास्क पहना दिए गए, कोई बुरी बात नहीं, किसी को 14 दिन के लिए एक जगह से दूसरी जगह आने के बाद रोक लिया जाए, कोई बुरी बात नहीं। तो जब अल्लाह ताला कहता है औरतें मर्दों से हाथ ना मिलाएं, मास्क की जगह निकाब है, आइसोलेशन है, मिक्स गैदरिंग्स ना हो, और घर के अंदर कुछ दिन के लिए अपने आप को रोक लो, कर नफी बुयूतिकुन, इस पे गुस्सा क्यों करते हैं हम लोग? अगर आप ये सारी आयतें पढ़े ना, तो अल्लाह ने औरत को जो बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया है ना, कि सेल्फी कल्चर से निकलो, प्रोफाइल पिक्चर्स के तबरुज से निकलो, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पे लॉकडाउन कर लो। और खास ही आप देखे कि इल्म की बातें हैं, वज़कुरना फी बुयूतिकुन, जो आगे बात आ रही है, जब औरतें मुअल्लिम बन जाती हैं ना, तो याद रखिए वो खूबसूरत हो जाती हैं। सबसे अच्छा हुसन जो होता है ना, वो जहानत का और तकवा का नूर होता है। बहुत कुछ कर करा के भी लोग वो नहीं कर पाते जो के अल्लाह ताला सादगी में दे देता है, सादगी का हुसन खूबसूरत होता है। तो लिहाजा ऐसे तबरुज के मामलात को रखते हुए घर से बाहर निकलते वक्त और करे क्या, क्वेश्चन एक, क्योंकि वक़्त नफी बुयूतिकुन, सिर्फ आप कुरान की आयत से देखें तो दैट मीन नो वे, औरत बस घर में पैदा हुई और वहीं मर गई। और आज भी हिंदू धर्म में कहते हैं कि औरत बस दो दफ़ा घर से निकलती है, एक जिस दिन उसकी डोली निकलती है और दूसरे दिन जब उसका घर से जनाजा निकलेगा। इस्लाम ये जुल्म आपके मेरे ऊपर नहीं करता। तो नोट कीजिएगा कर्न फी बुयूतिकुन की शरायत। नंबर एक, बाहर जाए तो ज़रूरत से जाए, विदाउट रीज़न नहीं। मैं इस चीज़ को भी एक बड़ी एनालॉजी से हमेशा ही समझने और समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देखिए कि घर में हर चीज़ की एक जगह होती है ना। मसलन आप देखिए कि आपकी डिशेस किचन में होंगी ना, पिलोस ब्लैंकेट आपके बेडरूम में होगा, डाइनिंग चेयर्स डाइनिंग रूम में होंगी, और इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें, आपके कपड़े आपकी अलमारियों में होंगे। जब कहते हैं कि घर साफ हो गया तो क्या होता है भला, हर चीज उसकी जगह पे चली जाती है। जब सुबह घर से मर्द और बच्चे निकलते हैं तो बेचारी औरतों से पूछा करें, घर अस्तबल लगता है। फिर ये जो झाड़ पूंछ और मासियों के से सफाइयां कर करा के हम क्या करते हैं, हर चीज को उसकी जगह पे करते हैं। सब गंदे बर्तन धो के अलमारियों में चले गए और कपड़े लॉन्ड्री में चले गए, घर साफ हो गया। बस जिस तरह हमारे घर में कुर्सी मेज कपड़े खाने और बर्तनों की जगह है ना, इसी तरह औरत की असल जगह घर है। लेकिन जरूरत के तहत देखिए, बर्तन बाहर निकलते हैं, ब्लैंकेट्स बाहर निकलते हैं, कपड़े गंदे भी होते हैं, धुलते भी हैं, इस्त्री भी होते हैं, लेकिन फौरन वापस डाल दो। औरत को करना फी बुयूती कुन कहकर ये एहसास दिला दिया गया कि तुमने असल में अपनी जगह नहीं छोड़नी, घर में रहो, जरूरत पड़ेगी तो जाएगी। औरतें जाती थी, सहाबियात जाती थी, नमाजें पढ़ने जाती थी, अपने माँ बाप को मिलने जाएंगी, बीमारों को देखने आप जा सकते हैं, खुशी गमी में जाएंगे, मना नहीं है। हदीस से काट दें तो सिर्फ ये आयत आपको ये बता देगी कि आप निकल नहीं सकते। लेकिन शरायत में शर्त क्या है कि बाहर जाएं, बनाव सिंघार अगर किया हुआ है तो उसको छुपा कर निकलें, जो सूरत के आखिर में हम पढ़ेंगे, जो नींद आ रही हिन्न मिन जला भी हिन्न। ये भी नहीं कि बनाव सिंघार कर नहीं सकती, कर सकती है, इंसान की फितरत है, जब बाहर निकलता है उसका दिल करता है वो फ्रेश लगे, लोगों को दुखी ना लगे, बीमार ना लगे, तो बस फिर उस पर अपने ऊपर एक जिलबाब डालेंगे आप। फिर इसी तरह अपना सर चेहरा बाजू छाती ढांपनी है कि लोगों को दावते नजारा ना मिले। फिर औरत खुशबू नहीं लगाएगी, करना फी बयूती को उनकी एक शर्त है कि औरत जब जरूरत के तहत भी घर से निकलेगी तो उसके जिस्म पर पैगाम देती हुई खुशबू ना हो, सादा लिबास पहनकर निकले, क्योंकि खुशबू भी तो एक किस्म का बजने वाला जेवर ही है ना, जिस्म पे जेवर ना हो बजने वाला, सूरत नूर में पड़ चुके। फिर ऐसी चाल ना चले जिसमें तकबर हो, गोया कि आप कह लीजिए कि खुद को शहद की मक्खियों का छत्ता ना बनाइए, क्या आस पास की मक्खियां भी उस पर आ जाए। हम थोड़ा सा अपना जायजा लेते हैं, क्योंकि कल्चरली हमारा दीन बिल्कुल एक दूसरे रंग में इस वक्त चला गया। चंद सवाल जो सिर्फ मेरे खुद से, जब मैं अपने कजन्स शोहर के किसी दोस्त या किसी गैर से बात करती हूँ तो मेरा लहजा कैसा होता है? ऐसा तो नहीं कि शोहर के साथ तो बोलें तो जैसे बादल गरजें और माँ बाप के आगे तो चीखें, और जहां को गैर देखा तो क्या हाल है और ऐसी टोन। फिर अगला सवाल, जब मैं घर से निकलती हूँ तो मेरा लिबास कैसा होता है? देखिए अक्सर लोग तैयार होकर निकले ना, फिर पूछते हैं ठीक लग रही हो, फिर वो लंबे शीशे में देखेंगे और आजकल एक दो सेल्फियां लेकर दूसरों को दिखाएंगे, मैं यहां पहुंच गई, ये करने लगी हूँ। एक दफा घर से निकलते हुए जूता पहनने से पहले पूछ लीजिए, अल्लाह जी मैं कैसी लग रही हूँ, क्या वाकई मैं किसी फितने का शिकार तो नहीं कि अपने लिए भी फितना और दूसरों के लिए फितना बनूं, किसी के दिल पे बिजलियां तो नहीं गिराऊंगी और फिर उसके बाद जो आग लगेगी वो तो लगेगी, सारी फिल्में इसी थीम पे चलती हैं। फिर तीसरा सवाल कीजिए, मेरा हाल हुलिया ऐसा तो नहीं होता कि देखने वाला पलट पलट कर देखे? यकीन कीजिए कुछ औरतें लड़कियां उनका हाल हुलिया ऐसा होता है, हम खवातीन भी उनको दोबारा देखती हैं, मर्द बेचारे क्या करें। फिर अगला सवाल कीजिए, क्या मैं इतनी खुशबू लगाकर तो नहीं निकलती जो हर गुजरने वाले को देखने की दावत दे, क्योंकि खुशबू तो एक खामोश पैगाम होता है। और इन सवालों के जो भी जवाब आए, इसके बाद एक मजीद सोच लम्हा फिक्रिया, हमारी कौम की माएँ बहनें बेटियां आज किस नहज पे खड़ी हैं, अपने अपने हालात को देखिए। हमारी तहजीब इस्लामी तहजीब बदल कर मॉडर्न कल्चर के नाम पर कहीं अल्लाह और उसके रसूल से जंग का इजहार तो नहीं करती दिख रही? मर्द औरत बराबर है यानी इक्वेलिटी, क्या आज हमने अल्लाह की शरीयत को इस जुमले के साथ बदल तो नहीं दिया? हालांकि फर्क सिर्फ 49:51 का था, 50-50 को 49:51 में बदल दें, 51 मर्द है तो 49 औरत है। और एक बात सोचने की है, कि हम अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे। यौम यकूमु अन्नासु लिरब्बिल आलमीन, इस हाल हुलिये में अगर मौत आ जाए तो क्या अल्लाह के सामने पेश हो सकती हूँ। फिर एक और बहुत ही तकलीफ दे बात, कल तबर्रुज के लिए किसी के घर जाना पड़ता था, किसी जगह पहुंचना पड़ता था। आज तो आसान जराए हैं, कल के तो तबर्रुज के लिए घर से निकलना पड़ता, आज घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। आप सेल्फीज ले लेकर सारी दुनिया को भेजिए, एक क्लिक पे लाखों तक आपका वो मैसेज जाता है। आप फेसबुक पे एक मैसेज डालिए, देखिए आपके प्यारों के प्यारे और पता नहीं दुश्मनों के दुश्मन भी आपको देख लेंगे। कई खवातीन है जिनकी बेटियों को लोगों ने नहीं देखा होता था क्योंकि वो कभी आई नहीं सामने, आज फेसबुक ने तो अच्छा ये फलां की बेटी, आज लोग कहते हैं वहां से जाके देख लीजिए, रिश्ते होते हैं तस्वीरों से। और ये खूबसूरत नाम है, मुझे फेसबुक भी अच्छा लगता है, मुझे इंस्टाग्राम भी अच्छा लगता है, मुझे टिकटॉक भी अच्छी लगती है, मुझे सोशल मीडिया भी अच्छा लगता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इन सब पे नूरुल कुरान के चैनल है मेरे गुमान में। टिकटॉक का मुझे नहीं पता लेकिन बाकियों के नाम मैंने साथियों से सुने हैं। लेकिन आज हमने इन सब चीजों पे तबरुज किया, क्यों लगाते हैं अपनी तस्वीरें प्रोफाइल्स पे, सवाल कीजिए। देखिए बड़े कहते थे कि उस चीज को सजाते हैं नंबर एक जिसको बेचना हो या कोई डेकोरेशन पीस हो, अल्लाह ना करे हमारी बेटियां इतनी सस्ती तो ना। कितने लोगों के पास आपका कॉन्टेक्ट होता है आपने कभी सोचा? आप अपने नंबर को देखिए ना, आप कैसे 1,000 से ज्यादा कॉन्टेक्ट होंगे। उन लोगों के भी वास्तव होते हैं जिनको आप करते भी नहीं फोन, ऐसे ही आ जाते हैं। आजकल तो आप फोन की मेमोरी में डालें तो आपको 10 साल पुराने कॉन्टेक्ट भी सेव कर दे, जहां जो चाहे आपकी तस्वीर खोल दे। ऐसा एक दफा हुआ पिछले सालों में, एक बच्ची थी कुरान पढ़ी, काफी अरसे के बाद जो दूरी हो गई थोड़ी, यानी रब्ता नहीं था, एक दफा जरूरत पड़ी, मैंने कहा मैं चेक करूं मेरे पास उसका फोन है। और उस वक्त मुझे लगता है एक और चीज थी व्हाट्सएप से पहले वाइबर, गालिबन पर्पल सा आइकॉन था, मैंने कांटेक्ट डाला तो उसका नाम आ गया। यकीन करें लंबी जुल्फे उसकी, बाल खुले हुए, उसके प्रोफाइल पे पिक्चर लगी, मेरे तो दिल पे बिजली गिर गई। मैंने सोचा कि तो जब मेरे पास है तो इसकी सहेलियों और उसकी फलां के पास नहीं होगा। बस मैंने एक क्वेश्चन मार्क उसकी तस्वीर पे लगाया, उसको वापस भेज दिया। मेरे लिए विद इन मिनट्स कह लीजिए कि उसने अपनी फेसबुक से तस्वीर और अपने प्रोफाइल से तस्वीर बदल दी। कभी नहीं सोचते माँ बाप, नहीं सोचते। शादियों की तस्वीरें लगती थी पहले हमारे वक्तों में, जब हम कभी इब्तदाई जवानी की दहलीज पे थे ना, घर के अंदर ड्राइंग रूम में शादी की तस्वीर लगी होती थी और दूल्हा दुल्हन की, और कुछ अपने बच्चों की बड़ी बड़ी करके लगाते थे, वो भी मायूब लगता था। उस कमरे में नमाज नहीं लोग पढ़ते थे, कभी पड़े कोई मेहमान तो उसके ऊपर चादर डालते थे, टीवी के ऊपर लोग कपड़े डाल डाल के नमाजें पढ़ते थे कि इसमें तस्वीरें आती हैं। आज मुझे आप बताइए, इस तबर्रुज के फितने ने, इस्लाम के आने के बावजूद जाहिलियत के फितने ने आज हमारी बहू बेटियों को कहाँ पहुंचा दिया। तो फिर देख लीजिए कि तबर्रुज है नुमाया होना, चेहरे और जिस्म का हुसन दूसरों को दिखाना, लिबास और जेवर की शान दूसरों को दिखाना, चाल ढाल से जिस्म के अज़ा को नुमाया करना। अल्लाह ने जरूरत के तहत जिस्म में कुछ कर्व्स दिए थे, जरूरत है ये, आप उसको पकड़कर ऐसे नुमाया करने लग गए कि गोया कि वो आपकी खूबसूरती का जरिया बन गए। तो जरा चंद चीजें फिर देख लीजिए, अल्लाह का हुक्म अभी तक जो पड़ा हमने इन चंद आयतों में, हम आगे जा ही नहीं पा रहे। पहली बात, बातचीत का अंदाज। एक मुसलमान बहन बेटी का अंदाज क्या होता है? बावकार हो, सीधी बात करे। आगे इसी सूरत में हम पढ़ेंगे कुल कौलन सदीदा, और सदीद कहते हैं तीर का निशाने पे लगना, दबी जबान में बात ना हो। आज हम फोन कॉल्स पे बात करते हुए और स्टोर्स में जाकर शॉपिंग के दौरान क्या इसी तरह बात करते हैं, और ये जो एक बड़ा टिपिकल अंदाज है ना, भाई जान दे दीजिए ना, हम औरों को भी भेजेंगे, क्या शॉपिंग में औरतें अपना अंदाज बेच के तो नहीं आ जाती? फिर इस तरह बाहर कब निकलें? बिला जरूरत ना निकलें, टिक करें, सुकून आपको घर में आएगा। देखिए मर्दों को अल्लाह सलामत रखे, वो रोज बाहर जाते नहीं थकते, और स्पेशली अगर आप पाकिस्तान के कुछ बाजारों के नाम जानती हैं, जैसे कराची में सदर है और लियारी है, लालू खेत है, एक दफा जिंदगी में आप कभी गई होंगी ना, आज दोबारा नहीं जाएंगी। हम खवातीन नहीं जा सकती, मर्द बेचारे रोज जाते हैं। रणछोड़ लाइन में जाकर देखिए, रिक्शा ना पहुंचे वहां, मर्द जाते हैं, होलसेल काम करें, स्क्रैप करें। आप जाके पूरी बिरादरी को देखिए, उनकी कहाँ है चीजें, कहाँ कहाँ जाते हैं, अल्लाह ने उनकी मिजाज में रखा है। औरत एक दिन बाजार जाएगी, 2 दिन सर में दर्द रहेगा, फिर माइग्रेन नहीं होगा तो और क्या होगा? वो तो वहां जाके होता था, आज हमें नट सी चीजें देख देख के माइग्रेन होने लगता है। और फिर निकलना है तो फिर कैसे निकलें? तीसरा हुक्म अल्लाह का, तबरुज नहीं करना। घर में रह रही हो तो क्या करोगी? वा अकीम नस्सला तवाथी नज़्ज़का, फिर नमाज, ज़कात, अतीउल्लाह, अतीउर्रसूल और कुरान का इल्म और दीन का काम करना है। तो आप दीन के लिए भी निकलते हैं ना, उस वक्त भी देखा करें कुछ गुनाह तो नहीं कर रहे। आप कहेंगे बात छूटी नहीं रही, कैसे छूटे जब तक हम दिल से नहीं छोड़ेंगे। तो एक और मुहासवा करते हैं अपना, मेरा किरदार बहसियत बेटी, बहन, बीवी और माँ के कैसा है। घर से कब निकलती हूँ, बिला जरूरत या जरूरत के तहत। ये तो आजकल की बातें नहीं है पूछने वाली, बांध के रख दिया। आज गवर्नमेंट ने भी कर नफी बयूती कुन पे अमल करा लिया, औरतों से नहीं मर्दों से भी करा लिया। कर रहे हैं, मजबूर हैं, क्या करें। खुशी से मान जाइए अल्लाह के हुक्मों को, तो इंशाल्लाह ये वबाएं और आफतें नहीं आएंगी। फिर अगला सवाल कीजिए खुद से, क्या मैं तबरुज तो नहीं करती, मेरा हाल हुलिया कैसा होता है बाहर जाते हुए। मैं मर्दों से किस तरह बात करती हूँ, क्या घर में रहकर कुरान और दीनी तालीम और कामों का एहतमाम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल तो इस पे बहुत अमल हो रहा है। आप सुनिएगा, जब औरतें मौलिम बन जाती हैं, जब औरतों का दिल बाहर से ज्यादा घर में लगने लगता है और बस कुरना पे अमल करती हैं, तो फिर ऐसी औरतों के साथ जो नस्लें पैदा होती हैं वो हैं आगे इन्नल मुस्लिमीन अवल मुस्लिमाति वल मोमिनीन अवल मोमिनात। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फरमाबरदारी करने वाले मर्द और फरमाबरदार औरतें, रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजजी करने वाले मर्द और आजजी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, रोजे रखने वाले मर्द और रोजे रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वालियां, बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले और जिक्र करने वालियां, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने वसी मगफरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। क्या पता चला ये नस्ल तैयार करनी है ना, पहले तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे और हमारी नस्लों में ये सारी खूबियां डाल दें। तो इसके लिए फिर औरतों को वज़कुरना मा युतलफी बुयूतिकुन पे अमल करना पड़ेगा, और अल्लाह ताला हर घर को एक मदरसा बना दे जिसके फर्स्ट रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स वहां के बच्चे और वहां के मर्द और औरतें हों। जब तक घर घर में दीन नहीं निकलेगा, दीन का काम नहीं होगा, उस वक्त तक याद रखिए नस्लें नहीं बदलेंगी। इस वक्त भी सोचिए कि अगर ये दीन का काम इस वक्त हमारे घर में बैठकर हम ना सुन पा रहे होते तो कितने लोग थे जो निकलते। लॉकडाउन ना होता तो हम में से कितने सुनते, हजारों की तादाद लाखों में चली गई इस लॉकडाउन की वजह से, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह घरों से सुनने वाले। और अल्लाह ताला इसको बबरकत करे आपके मेरे लिए। अब इसके बाद एक और बात जो इन सारी बातों के बाद पैदा होती है, और वो क्या है, वमा कान लिल मोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा क़ादा अल्लाहु व रसूलुहु अम्रा। और देखो किसी मोमिन मर्द औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद अपने किसी अमर का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। याद रखो कि जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की बिना फरमानी करेगा वो सरीह गुमराही में पड़ेगा। क्या पता चला कि इख्तियारी बातें नहीं है, इट्स नॉट ऑफ योर चॉइस, ये फर्ज है। जब अल्लाह ने आपके लिए मेरे लिए ये सारी चीजें चूज कर ली तो फिर मुझे आपको इसमें क्या मसला है। लेकिन बात यह कि हमारे और सहाबियात में एक बहुत बड़ा फर्क है कि वो बेयर मिनिमम पे नहीं रहते थे, वो लीस्ट पे काम नहीं करते, चलो एटलीस्ट इतना तो कर लेना, नहीं, वो दी बेस्ट पे काम करते थे, अजीमत के रास्ते पे काम करते थे। क्योंकि जब आप बहुत ऊंची नीयत करते हैं ना तो फिर थोड़ा सा नीचे कहीं जाएंगे तो कुछ तो होगा, लेकिन जब नीयत ही की है पहले स्टेप पे जाने की तो उधर भी ना जा सके तो क्या होगा। तो फिर यहां देख लीजिए कि जाहिलियत उखरा का तबरुज घर के अंदर से भी होता है। जाहिलियत उला में तबरुज के लिए जो बातें हमने सीरत की बुक्स में पढ़ी, मैं जब उसको दोहरा कर देखू ना तो आज लगता है कि आज के इन छोटे छोटे मामलात में इन मीडिया से इन सारी चीजों को आसान कर दिया। आज के दौर में जो कुछ हो रहा है इसी तबरुज के जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जरा उसको देखिए। जितना तबरुज आम हुआ, बेपर्दगी और फहाशी आम हुई, जिना और अखलाकी बुराइयां और जरायम आम हुए, शिर्क और अबाप परस्ती और दीन में इजाफे यानी बिदात की सूरत में आम हुए, मुंह बोले रिश्तों के नाम पर बिगाड़ पैदा हो गया, हर किस्म के लोगों की घरों में आमदोरफ्त हो गई। इसी तरह मर्दों और औरतों का इख्तलात यानी मिक्सिंग इतनी आम है, लोग मानते ही नहीं कि शादी बगैर मिक्सिंग के हो भी सकती है। उतनी जाहिलाना सोच और जाहिलाना रस्म और रिवाज आम हो गए। ये सब तबर्रुज के तोहफे हैं। जितना तबर्रुज आएगा शैतान आपको बहकाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये तबर्रुज का फितना इतना सख्त कैसे हो गया, ये वजूहात क्या है इसकी। यानी इस्लाम के आने के बावजूद भी इंसान जाहिलियत में पड़ा हुआ है, इसकी वजूहात ऑफ कोर्स सबसे पहले तो हम कहेंगे शैतान के बहकावे, लेकिन फिर असल वजह कुरान सुन्नत से दूरी है। कुफार और यहूद और नसारा से दोस्ती और मरूबियत इसकी बहुत बड़ी वजह, हम उनको कॉपी करते हैं, उनके जूतों में पाँव डालते हैं, उनके कदमों पे कदम रखने की तो पेशन गोई अल्लाह के नबी ने भी कर दी थी। इसी तरह शरीयत के अहकामात से हम नावाकिफ हैं और उनकी हिकमतों से तो बिल्कुल ही नावाकिफ हैं। वो महातुल मोमिनीन और सहाबियात के किरदार और सीरत से बिल्कुल नावाकिफ हैं। पढ़ाइए अपनी बेटियों को इनकी कहानियां, फिर पूछिए कि आप बताओ वो कैसी लगती थी और तुम कैसी लग रही हो। इसी तरह मगरबी औरत को अपना आइडियल बना लिया हमने, और कामयाबी की दलील वेस्टर्नाइज होना, और दुखी दिखाना हो तो काला बुरका और उसी से बच्चे का नाक साफ करती हुई औरत कहते हैं बेचारी पिटी मुस्लिमा। इसी तरह दुश्मनान इस्लाम की साजिश तो थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी है। जितना ज्यादा इन फितनों से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, नफ्स पे पांव रखिए। आप कहते हैं आप हमें हमारे हाल पे क्यों नहीं छोड़ते, हम तबरुज करें, हम बाहर फिरें, हम जो एची बीची आपने इतनी देर से हमें तंग किया हुआ हम करें, आपको क्या लगे? तो आइए मैं आपको बताती हूँ आपको क्या लगे, लिखिए इनफिरादी असरात क्या होते हैं इस तबरुज के। इस जाहिलियत उला वाली कैफियत में आने के नुकसान, पहली बात है कि आपका नाम अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमान में लिखा जाता है, डिसोबीडियंसी ऑफ प्रॉफिट एंड अल्लाह ताला। चाहते हैं क्यामत के दिन आपका नाम लिया जाए बुलाओ अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान को, आज दुनिया में कोई ना बर्दाश्त करे, क्या वहां करेंगे हम? फिर इसी तरह से अल्लाह की रहमत से दूरी, और रहमत क्या है, आपको मुझे रहमतें ही चाहिए तभी हम हादसों और तकलीफों से बचे हुए। तो आप कहते हैं कि मैं अपनी मर्जियां करूं, अल्लाह ले जा तो अपनी रहमत, ये आपको नुकसान होगा मुझे नहीं होगा। और याद रखे कि फिर ऐसी बच्चियां जिंदगी में धक्के खाती हैं, और कुरान पढ़ के अगर आप अमल ना करें, मैं कह सकती हूँ जिसको कुरान ना बदले फिर उसको मुसीबतें बदलेंगी, फिर जिंदगी में कोई हादसा आएगा फिर बदलेंगी, कोई चोट खाएंगी तो फिर बदलेंगी, और अल्लाह बचा के रखे हमें कुरान से हिदायत दे दे कि अल्लाह जो बात उन्हें हमें अजाबों में और मुसीबतों में डाल के सिखानी है वो इस कुरान से सिखा दे। फिर इसी तरह आप देखिए आप शैतान के तरीकों की पैरवी करेंगी, चाहते हैं कि आप शैतान के फुटस्टेप पे चलें तो जिधर वो पहुंचेगा वहां आप पहुंचेंगे। फिर ऐसी औरत की इज्जत नहीं होती, लिख लीजिए बड़े से बड़ा मॉड स्कॉट लड़का भी शादी के वक्त एक भोली भाली सीधी लड़की ढूंढता है, वो जिसके साथ इतने साल से फिरा, कहता नहीं उसका मुझे पता है वो औरों के साथ भी फिरते, मुझे ऐसी बीवी नहीं चाहिए, मुझे अपने बच्चों की अच्छी माँ चाहिए। खुद सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली और अब लड़की किसी भोली भाली के साथ शादी करना है, ऐसी लड़की की कभी इज्जत नहीं होती, जितना मर्जी लोगों को अपने हुसन से वो गरमा दे। और इसी तरह से अल्लाह की हदूद को तोड़ने वाली औरत का फिर ताल्लुक बिल्ला कैसा होगा, नमाजें कैसी तो रोजे कैसे, फिर वो बोझ लगता, फिर आप पढ़ते भी हैं तो शाम को सोने से पहले सारी इकट्ठी पढ़ते हैं। चलिए ये तो थे आपके इनफरादी मामले, आप जाने और आपका रब जाने। याद रखिए इस तबरुज ने इज्तमाही तौर पर भी कौमों को घुन लगा दिया, इज्तमाही असरात भी हैं इस बेपर्दगी और फहाशी के। पहली बात है फितने और आजमाइशें आएंगी, कुरान तो बार बार यही कहते हैं लोगो देखो तुम्हारा क्या कसूर है इस कोरोना के आने में और इस लॉकडाउन और इस मुश्किल में पड़ने में, अपना भी तो हिस्सा डालो कि तुमने कौन सी लकड़ी लगाई थी इस आग को जलाने में। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बेपर्दगी और फोहश आम होता है, गुनाहे कबीरा और जराइम में इजाफा होता है उस मुल्क के, अल्लाह की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि फिर अल्लाह बारिशें रोक ले या अल्लाह तला से लाभ ले आए उसकी मर्जी, उम्मत का जवाल शुरू हो जाता है, कमजोर नस्लें पैदा होती हैं, और कह लीजिए कि जहनी अखलाकी और किरदार की पस्ती आम होती है। मूछों पे ताव देते हुए मर्द आपकी बेटी बहू बहन को देख रहे हैं, कभी आपने ड्राइवर्स के बारे में सोचा, कभी माली बाबाओं के दिलों पे क्या गुजरती है सोचा, राह जाते मजदूर जिन बेचारों के पास बीवी को देने के लिए शायद 100 रुपए का तोहफा ना हो, जब वो आपको इस तरह की लग्जरियस शॉपिंग्स करते कराते आपके बैग्स को गाड़ियों में रखते निकालते देखते होंगे, क्या किसी दिन जोश में गुस्से में वो कुछ नहीं कर सकता? हम मुजरिम हैं इस तबरुज को आम करके। चलिए फिर आखिरत के असरात भी ले लीजिए ताकि शायद यही बात मेरी आपकी इसलाह का जरिया बन जाए। तबरुज करने वाली औरतें जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगी। ऊपर की हदीस याद करें जो आपके पारे की आज थी हदीस है, तबरुज की तबाही जहन्नम तक ले जाने का सबब बन सकती है। इस पे मैं चाहती तो आपके लिए 10-10 हदीसें भी एक एक मौजू पे जमा कर सकती थी, लेकिन जरूरत नहीं है, आप खुद सीख लीजिए, बहुत कॉमन मौजू है, ये कोई नई बात नहीं है। अब आगे एक माशरे के अंदर कैसे मुख्तलिफ चीजें जो जड़ पकड़ चुकी होती हैं लेकिन इस्लाम से मैच नहीं करती, उसको तोड़ना, यही सूरत अहज़ाब का सबसे मुश्किल वक्त है। समझ लीजिएगा, अरबों में मुंह बोले बेटे को सगे बेटे की जगह पे लेते थे और उसकी बीवी सगी बहू की तरह थी, हालांकि असल में ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला इस कानून को और इस रस्म को तोड़ना चाहते थे और ये रस्म इतनी जड़ें बना चुकी थी कि अल्लाह के नबी के सिवा कोई और इस रस्म को तोड़ नहीं सकता था, हालांकि अल्लाह के नबी भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, उनके जरिए से ये काम हो। तो इसलिए अब यहां सुनिएगा, जैद जो आपके मुंह बोले बेटे थे, उनकी शादी अल्लाह के नबी ने अपनी फूफीजाद बहन जैनब से की थी, वो इनको पसंद नहीं कर सकी। सीधी सी बात है, खानदानी तफाखुर था, एक औरत के दिल में मर्द की इज्जत तो होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए। ये ऐसा तो नहीं है ना, किसी ने आपको एक कपड़ा दिया आप पहन लीजिए, कोई खाना दिया आप नहीं खाना चाह रहे खा लें। शोहर बीवी का ताल्लुक, जिस बाती ताल्लुक भी होता है, उसमें बहुत कुछ है। तो एज अ हस्बैंड वो बर्दाश्त ना कर सकी, उनको आर आती थी कि मैं एक गुलाम की बीवी हूँ। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इन वाकयात में फिर उधर से उनको तलाक दिलवाई और अल्लाह के नबी को कहा कि अब आप जैनब से निकाह करेंगे, हालांकि लोग उनको हजरत जैद के नाते से आपकी बहू समझते थे लेकिन वो असल में मुंह बोला रिश्ता था। ये सारी बातें सिनेरियो समझते हुए जहन में देखिएगा, वइस्तकूलुल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैह, याद करो जबकि आप उस शख्स से कह रहे थे कि जिस पर अल्लाह ने भी नाम किया और आपने भी, कि तू अपनी बीवी को अपने पास रख और अल्लाह से डर, तो आप अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था, और आप तो लोगों से खौफ खाते थे, हालांकि अल्लाह ताला इसका ज्यादा हकदार था कि आप उससे डरे। बस जबकि जैद ने इस औरत से अपनी गरज पूरी कर ली, हमने इसे तेरे निकाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर अपने ले पालकों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी न रहे, जबकि वो अपनी गरज इनसे पूरी कर लें। अल्लाह का ये हुक्म तो हो के ही रहने वाला था, यानी अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इसलिए किया और इस तरह से किया कि जो अल्लाह चाहता है वो काम तो फिर होके रहेगा। जो चीजें अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए मुकर्रर की हैं, इनमें नबी पर कोई हरज नहीं, यही अल्लाह ताला का दस्तूर इनमें भी रखा जो पहले हुए, और अल्लाह ताला का काम अंदाजे पर मुकर्रर किए हुए है। ये सब ऐसे थे कि अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचाया करते थे और अल्लाह ही से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरते थे, और अल्लाह ताला हिसाब लेने के लिए काफी है। लोगों, तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन आप अल्लाह ताला के रसूल हैं और तमाम नबियों के खत्म करने वाले, और अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानता है। यहाँ है अल्लाह के नबी के खातमुन नबीयीन होने का जिक्र। आप देखिए कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी थे। सील और स्टैम्प का फर्क याद रखिए, कुछ लोगों ने बहुत ही होशियारी के साथ जहां सील को स्टैम्प कर दिया। देखिए, मुसलमानों का मुत्तफिक फी अकीदा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी थे। सूरत बकरा के पहले रुकू में आप देखे ना, वमा उन्जिला मिन कबलिक, जो आपसे पहले नाजिल हुआ था उस पर भी ईमान लाता मुत्तकी, ये नहीं कहा मिन बादिक, वरना ये यकीन ना होता कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, तो किसी ने भी आपके बाद अगर नबूवत का दावा किया वो तो कुफर पे गया। किसी ने उससे ये सबूत भी मांग लिया, कहता सबूत पेश करके तू नबी है, वो भी कुफर पे चला जाएगा। और अल्लाह के नबी की जिंदगी में ये दावे शुरू हो गए थे, और अल्लाह ने आपको ख्वाबों के जरिए भी दिखा दिया, बस मुसैलमा कज़्ज़ाब था, अस्वद अंसी था, और इस तरह एक औरत ने भी दावा किया, और आज के दौर में भी ऐसे लोग दावेदार हैं जो अल्लाह के नबी के बाद नबूवत के दावेदार, और उनके बकौल हजरत ईसा अलैहि सलाम आके दुनिया से जा भी चुके और ईसा ने ही मसीले मसीह आएगा। याद रखिए, इन अकायद से अपनी नस्लों को बचाइए। पैसा पानी की तरह लगाकर ऐसे लोग बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच जाते हैं, अखलाक इतना खूबसूरत के लोग कहीं इनसे अच्छे तो दीनदार हमने कभी देखे नहीं। तो अपने बच्चों के दिलों में इन चीज़ों को रासिख कर दीजिए कि हम अपने नबी के बाद किसी और नबी के बारे में सोच भी नहीं सकते। देखिए कितनी ज़रूरत है अकीदे पे काम करने की। हमारी नस्लें इस वक्त जिन फितनों का शिकार हैं वो ये फितने हैं। बाहर वाले तो तभी आकर आपके बच्चों को बहकाएंगे जब आपने उनके अकायद पुख्ता न किए हो और आपने उनको इन सारी चीज़ों का फहम न दिया हो। तो कहाँ वक्त है आज की माँ के पास इस तरह तबरुज करके बाजारों में घूमने का, और पार्लर से निकली तो ज्वेलर पे, और ज्वेलर से निकली तो मसाज पे और फलां पे। औरतें इतनी सेल्फ कॉन्शियस नहीं होती थी, इतनी ब्यूटी कॉन्शियस नहीं होती थी पहले दौर में। ये वो वक्त होते थे जहां औरतें जिम्मेदारी को महसूस करती थी कि हमारी जिम्मेदारी नस्लें पैदा करना है, प्रोड्यूस करना है, उनको अपने बच्चों को पालना संवारना, उनके काम करना अपनी हर पर्सनल एक्टिविटी और हाइजीन से ज्यादा प्यारा होता था। आज की माँ को भी यही करना पड़ेगा इंशाल्लाह। और ये कुरान पढ़ने के बाद हकीकत में इसके दरवाजे खुलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मुसलमानों अल्लाह का जिक्र बहुत ज्यादा किया करो और सुबह शाम इसकी पाकी बयान करो। वही है जो तुम पर अपनी रहमतें भेजता है और इसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ रहमत करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से उजालों की तरफ ले जाए। और अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत ही मेहरबान है। जिस दिन ये अल्लाह से मुलाकात करेंगे इनका तोहफा सलाम होगा। इनके लिए अल्लाह ताला ने बाइज्जत अजर तैयार कर रखा है। ए नबी, यकीनन हमने ही आपको रसूल बनाकर गवाहियां देने वाला, खुशखबरियां सुनाने वाला और आगाह करने वाला बनाकर भेजा है, और अल्लाह के हुक्म से इसकी तरफ बुलाने वाला रोशन चराग। अल्लाह के नबी की शान में इससे खूबसूरत आयतें मुझे कुरान पाक में नहीं दिखती। पहले खातमुन नबीयीन कह दिया और अब आपके साथ हमारे ताल्लुक की बुनियादें, यानी कह लीजिए कि अल्लाह के नबी की शान आप और मैं इस तरह बयान कर ही नहीं सकते थे जैसे कि अल्लाह ताला ने बयान कर दी। ये असल में अंधेरों से उजालों का सफर है। आयत 43 में अगर आप देखते हैं तो कैसे अल्लाह ताला आपको मुझे अंधेरों से रोशनी में डालता है। नबी पर दुरूद पढ़ने का तरीका, उनके साथ मामला करने का तरीका, आप देखिए कि आज दुनिया में बहुत पढ़ा लिखा शख्स रेंगलर की डिग्री भी ले ले, लेकिन अगर अल्लाह के नबी के मुकाम को न समझ सका तो वो एक दुनियादार मुसाफिर होगा। लेकिन जो दीन नहीं सीखता और दुनिया भी नहीं लेता वो भी नाकाम है। आप दोनों को गोल बनाइए, अल्लाह के नबी का हक भी ले लीजिए, कुरान को भी देखिए, हदीस को भी लीजिए, तो आपको अल्लाह के नबी की जो खूबियां दिखेंगी वो आयत 40 में आपके सामने है। पहली तो बात है दुरूद पढ़ना। कौन सा दुरूद? दुरूद इब्राहिमी। नमाज में बैठकर पढ़ा है, उधर ही पढ़ना है। आप खड़े होकर नहीं पढ़ेंगे कि आप क्याम की जगह पे दुरूद पढ़ें। दौरे हाजर का एक फितना खुद साख्ता दुरूद भी है। इस पर एक बुक है मसनून दुरूद के नाम पर, तफीम सुना सीरीज में आप उससे फायदा उठा सकते हैं। दुरूद शरीफ के मसाइल, बहुत प्यारी किताब है, पढ़ाई भी है किताब, हम कोर्सेज में भी उसको पढ़ते हैं। इस आयत में जो आपके सामने खूबियां, नबी सल्लम शाहिद थे। कैसे? सारी दुनिया पर शहादते हक की गवाहियां देते हुए दुनिया से गए और आज उम्मत को ये काम सौंप दिया। मुबशिर थे, खुशखबरियां देते थे। किन को? जो लोग अच्छे काम करें ईमान लाने के बाद। नजीर थे उनके लिए जो नाम तो इस्लाम का इस्तेमाल करें काम ना करें, जाली मुसलमान। फिर अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले थे, दाईयनिल्लाह, अल्लाह हमें भी दाईया ही बना दे। और रोशन चिराग थे। कौन सा चिराग? हिदायत का चिराग है। जब ये दुनिया में जला तो पिछली जाहिलियत के सारे अंधेरे मिट गए। अल्लाह ताला हमें भी इन्हीं कामों में लगा दे। आप मोमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए कि इनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ा फजल है, और काफिरों और मुनाफिकों का कहना न मानिए, और जो ईजा इनकी तरफ से पहुंचे इसका ख्याल भी न कीजिए। अल्लाह ताला पर भरोसा किए रहें और काफी है अल्लाह ताला काम बनाने वाला। ए मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो फिर हाथ लगाने से पहले ही तलाक दे दो तो इन पर तुम्हारा कोई हक इद्दत का नहीं जिसे तुम शुमार करो, बस तुम कुछ ना कुछ इन्हें दे दो और फिर भले तरीके से इनको रुख्सत कर दो। दोबारा देखिए खवातीन के मसाइल हैं, कितना अल्लाह ताला इस चीज को अहम समझते हैं कि औरतों और मर्दों के जाती मामलात में बिल्कुल दुरुस्त लाहे अमल इख्तियार किया जाए। ए नबी, हमने आपकी वो बीवियां हलाल कर दी जिन्हें आप उनके हक महर दे चुके, और वो लौंडियां भी जो अल्लाह ने गनीमत में आपको दी, और तेरे चचा की लड़कियां और फूफियों की बेटियां और तेरे मामुओं की बेटियां और तेरी खालाओं की बेटियां भी जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है, और वो बाईमान औरतें जो अपना नफ्स नबी को हिबा कर दे, ये सूरत में कि खुद नबी भी इनसे निकाह करना चाहे, ये खास तौर पर सिर्फ आप ही के लिए है और मोमिनों के लिए नहीं। हम इसे बखूबी जानते हैं जो हमने इन पर इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में अहकाम मुकर्रर कर रखे हैं, ये इसलिए कि तुझ पर हरज वाकई न हो। अल्लाह ताला वाकई बहुत बख्शने वाला है और बड़ा रहम करने वाला है। इसमें से जिसे चाहे दूर रख दे और जिसे चाहे अपने पास रख ले, और अगर तू इनमें से भी किसी को अपने पास बुला ले जिन्हें तूने अलग कर रखा था तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं। इसमें इस बात की ज्यादा तवक्को है कि इन औरतों की आंखें ठंडी रहें और वो रंजीदा न हों, और जो कुछ भी तू इन्हें दे दे इस पर सब की सब राजी रहें। तुम्हारे दिलों में जो कुछ है इसे अल्लाह ताला खूब जानता है, और अल्लाह ताला बड़े ही इल्म वाला और हिल्म वाला है। इसके बदौर औरतें आपके लिए हलाल नहीं, यानी जब बीवियों ने आपको चूज किया तो उसके बाद अब कोई और शादी आपकी नहीं हुई, और न ये दुरुस्त है कि इनके बदले में और औरतों से निकाह करें, अगरचे इनकी सूरत अच्छी भी लगती हो मगर जो तेरी ममलूका हो, और अल्लाह ताला हर चीज का पूरा निगहबान है। ये सारा टॉपिक अल्लाह के नबी की खास तौर पे जाती जिंदगी से था, सूरत के शुरू में पिछले पारे में मैंने दो जुमले बोले थे कि आज के दौर के दो बड़े महाज हैं। दो चीजों पे वेस्ट ने बहुत काम किया, वॉर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड वाइव्स ऑफ द प्रॉफिट। कहीं अल्लाह के नबी की शादियों को बुनियाद बनाया गया, कहीं हजरत आयशा की छोटी उम्र में शादी को बुनियाद बनाया, और कहीं चार से ज्यादा शादियों की बातें की और दूसरी तरफ जंगों की बातें। तो ये पूरा हिस्सा अल्लाह के नबी की पर्सनल लाइफ का है। अल्लाह ने उनको जब बहुत ज्यादा बड़े काम दिए तो उनको मुराद भी दी, दूसरों से बढ़कर दी, तो क्या हर्ज है इसमें? जब मालिक दे रहा है तो आपको मुझे इसमें इतराज की क्या जरूरत है? तो ये बातें सिर्फ आयतों से समझ नहीं आती, इसके लिए थोड़ा सा मजीद वक्त लगाने की जरूरत है ताकि हम तफसील से इस मौजू को देखें। दोबारा निजी जिंदगी में कैसे अमन चैन कायम होगा, इसके कुछ अहकाम हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तक तुम्हें इजाजत ना दी जाए तुम नबी के घरों में ना जाया करो, खाने के लिए भी इजाजत के बाद जाओ। ये नहीं कि पहले से जाकर बैठ गए और खाने के पकने का इंतजार करते रहे, बल्कि जब बुलाया जाए तो जाओ और जब खा चुको तो निकल खड़े हो। वहीं बातों में मशगूल ना हो जाया करो, नबी को तुम्हारी इन बातों से तकलीफ होती है। देखिए हजरत जैनब के वलीमे पर यह सब आयतें नाजिल हुई। अब देखिए कि इस्लाम इतना डिसेंट और मुहज्जब दीन है कि अगर आज इस पर अमल कर लिया जाए तो अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात को भी खूबसूरत कर दे। और यहाँ दावत के तरीके भी सिखाए गए, हर औरत ये आयतें पढ़ कर कहेगी कि अल्लाह के नबी के जरिए जो अहकाम आते हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं। क्योंकि खाना पकने के दौरान मेहमान आ जाए तो औरत के लिए मुश्किलात, घर अभी गंदा था तो लोग आ जाए, और खाने के बाद आधी रात तक बैठे रहे तो बेचारी सारे दिन की थकी हारी औरत कैसे आराम करेगी। और दूसरी बात ये भी समझ आती है कि अल्लाह के नबी में तो मुरव्वत थी, लेकिन अल्लाह हक बात कहने और उसको दूसरों से पेश करने से नहीं शर्माते। अल्लाह के नबी की तरफ से ये बात की गई कि आप नहीं कहेंगे लेकिन अल्लाह ताला तो इस बात को फरमा ही देंगे। वो तो लिहाज कर जाते हैं और अल्लाह ताला हक बयान करने में किसी का लिहाज नहीं करता। जब तुम नबी की बीवियों से कोई चीज तलब करो तो तुम पर्दे के पीछे से तलब करो। तुम्हारे और इनके दिलों के लिए कामिल पाकीज़गी यही है, और न तुम्हें जायज़ है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दो, और न तुम्हें यह हलाल है कि आपके बाद किसी वक्त भी आपकी बीवियों से निकाह करो। याद रखो अल्लाह के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। मिन वराए हिजाब, इसकी जरूरत तो तब पड़ती है ना जब औरतें अपने अल्लाह के दूसरे हुक्मों को माने। देखिए इस्लाम का ये मिजाज, पर्दा, नमाज, रोजा, ये वो चीजें आज तक किसी ने इस पे बात नहीं की थी। ये इस लास्ट सदी 19th सेंचुरी का मिड कह लीजिए, उधर से ये फितने उठे। औरत का पर्दा, औरत का हिजाब, चेहरे का पर्दा है कि नहीं, मिक्स गैदरिंग्स नहीं, ये ख्वाहिशें जब भड़ी ना तब हुई। हमारे असलाफ, हमारी नानियां, हमारी परदादियां किस तरह के जिंदगियां गुजारती थी। अब देखिए घरों में पर्दे लगते थे, जनान खाना अलग होता था, मर्दान खाना अलग था। आज भी मुहज्जब लोग ऐसे ही हैं, बिलीव मी, मैं नाम नहीं लेती कि खामखा तकाबुल आ जाता है। आज भी हम पाकिस्तान में रहने वालों में और इंडिया में और बांग्लादेश और इसके अलावा दुनिया में, ज़ाहिर है कि इंडोनेशिया में मुस्लिम्स होंगे, मलेशिया में मुस्लिम्स होंगे, आज भी ऐसे कई महजब माशरे हैं कि औरतों और मर्दों के बिल्कुल उठने बैठने की जगह अलग। या हमने ड्राइंग रूम बड़ा करके उसमें मिस्टर और मिसिस को बिठाया और फिर लचकती हुई जुबानों से बातें होती हैं। या आज हमारी शादियों में मिक्सिंग हो गई, अल्लाह के नबी के दौर में तो ऐसा था ही नहीं। हजरत अनस एक बच्चे हुए थे, 10 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के घर में थे, आते जाते घर के मुलाजिम थे, खादिम खास थे, जरूरतन इधर से उधर बीवियों के हुजरों में आते। एक दिन आने लगे तो आगे पर्दा डल गया। परेशान हो गए, मैंने कोई गलती कर दी, क्या हो गया, ये क्या हुआ? कहानी अनस, हिजाब की आयतें उतर गईं। क्या अब इसके बाद जब कभी कोई चीज मांगनी हो, मिम्बर आई हिजाब, हिजाब के पीछे, हिजाब यहाँ कर्डन के मानों में, इवन औरत पर्दे में भी सामने नहीं आती थी। आपको अंदाजा होगा अगर आप असलाफ को पढ़े, कितने फितने ना बन गए आज इससे भी। तो जरूरत इस बात की कि अल्लाह हमारे ईमान और तकवा को बढ़ा दे। और इस आयत से पता चला कि आपकी बीवी अजवाज मतहरात थी, चाहे जवानी में बेवा हो गई आयशा, लेकिन फिर उनसे किसी दुनिया के मर्द का निकाह नहीं हुआ। तो अब देखिए निकाह नहीं था तो फिर साबियात ने और अजवाज मतहरात ने क्या पर्दे उतार दिए? और ये भी बड़ा इशू है कि हम तो शादी शुदा है, हमारी तो किसी से शादी नहीं हो सकती, और हमारे तो बच्चे ही नहीं हो सकते, और हम तो ऑपरेट करा चुके। नाउज़ुबिल्लाह, आप लोगों को बताएंगे? अब आप अल्लाह के इस हुक्म को जरा देखिए, और आज मुसलमानों की जहालत जो इस्लाम के बावजूद है, रात गए तक मखलूत पार्टीज का फितना, आज खुशियों के नाम पे भी है, गमियों के नाम पे कमी होता है। मौत वाले घर में कोई नहीं कहता मिक्सिंग होनी चाहिए जी, ये कि औरतें अलग मर्द क्या, बल्कि वहां तो कोई पहचानेंगे नहीं कि ये भाभी हैं जो रात ऐसी सजी संवरी दिखती हैं शादियों में, और इस वक्त तो इनका शक्ल हाल हुलिया ना बदल जाए। याद रखे कड़वी बातें हैं लेकिन सहनी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना कि जहर भी करता है कभी कारे तरियाकी। और एक बात लिख लीजिए, जब तक मर्दों में गैरत नहीं आएगी और औरतों में हिजाब लिबास निकाब की पाबंदियां नहीं आएंगी, इस्लाम का रंग नहीं दुनिया को देखेगा, सिबगत अल्लाह आ नहीं सकता। तो अल्लाह का हुक्म तो क्या है कि जब दावत की जाए तो आओ, मगर खाना खा के मुंतशिर हो जाओ, बातें ना करो। आज हमारा क्या हाल है, रातों की दावतों का रिवाज, जितनी रात गुजरी उतनी महफिल गर्म हुई। और इसी तरह फिर डांस म्यूजिक और पता नहीं क्या कुछ ताश के दौर चलते हैं। गाड़ी भरकर बाहर हल्ला गुल्ला करने निकल गए हमारे जवान बच्चे, ये हमारा हाल है ना रोने की बातें। अल्लाह हमारी इसलाह कर दे। तुम किसी चीज को जाहिर कर दो या छुपा कर रखो तो हर चीज का बखूबी इल्म अल्लाह रखने वाला है। इन औरतों पर कोई गुनाह नहीं कि वो अपने बापों और अपने बेटों और भाई और भतीजों और भांजों और अपनी मेलजोल की औरतों और मलकियत के मातहतों यानी लौंडी गुलामों के सामने हो। इतनी लिस्टें देने की जरूरत क्या है? देखिए सूरत निसा से शुरू हुई है लिस्टें, मुहर्रमात की वहां लिस्ट देखी, फिर सूरत अल अराफ में देखा लिबास हिजाब को, फिर सूरत नूर में डिटेल से महरम और गैर महरम के नाम लिए गए, जाके दोबारा देख लीजिए, भांजों भतीजों तक के नाम आए। और यहाँ आप देखिए कि बापों भाइयों भतीजियों भांजियों, इस्लाम का एक रिचुअल है पर्दा, इस्लाम का शाइरा है पर्दा, इस्लाम की पहचान है। और इन्हीं पर्दों को पामाल करके देख लीजिए कि आज हमने इस्लाम को पीछे कर दिया। आप और मैं इन चीजों को जितना मर्जी पीछे डालें, ये हर साल हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क बन के आती है। और मैं नहीं मानती कि वो औरत सच्चे दिल से दीन की खिदमत कर सकती है जो पहले अपने इन मामलात में संजीदा ना हो। अल्लाह ताला फरमाते, औरतों अल्लाह से डरती रहो, अल्लाह ताला यकीनन हर चीज पर शाहिद है, अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। अल्लाह के नबी को दुरूदो सलाम के तोहफे दो। पर अपने हाल हुलिये भी देख लो कि क्या इस महफिल में अल्लाह के नबी आएंगे? बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे खुशबू और मेकअप में लुथड़ी हुई औरतें खड़ी होके कहती हैं अल्लाह के नबी आ रहे हैं, आओ पहनाओ फूलों के हार और लग सखियों फुलां फुलां। कभी आप लोगों की मोहब्बत के डायलॉग तो सुनिए, लेकिन जब अल्लाह के नबी का कोई हुक्म आ जाए तो हम सोच में पड़ते हैं, लेट मी थिंक, लेट मी आस्क माई हस्बैंड। तो ऐसी चीजों से क्या होता है? इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा देते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की फिटकार है और इनके लिए नहायत रुस्वा कुन अज़ाब है। और जो लोग मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को ईज़ा दें बगैर किसी जुर्म के जो इनसे सरजद हुआ हो, वो बड़े ही बुख्तान और सरीह गुनाह का बोझ उठाते हैं। ये है आज मुसलमानों का मामला। जरा सा नोट कीजिए आयत 57 में जो अल्लाह के नबी को अजियत देने की बात हुई, कहीं मैं और आप जानते बूझते या अनजाने में अल्लाह के नबी को अजियत तो नहीं देते? कैसे? पहले तो बींग अ वुमेन, बींग अल्लाह के नबी की बेटी और उम्मतिया होते हुए क्या मैं बेपर्दगी का शिकार होकर नबी को तकलीफ तो नहीं देती? देखिए आज भी जो माँ बाप दीन से जुड़े होते हैं ना, वो अपने बच्चे बच्चियों के बुरे हुलियों पे कुड़ते हैं। तो अगर अल्लाह के नबी आ जाएं तो क्या वो खुश होंगे मेरे हाल हुलिये को देखकर? अगर ये जुमला आज समझ आ जाए तो फिर इसके बाद कभी दूसरे की खुशी इतनी अहम नहीं लगेगी जितनी अल्लाह के नबी की खुशी। फिर इसी तरह तकलीफ देते हैं हम अल्लाह के नबी को जब सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, और जो हम उड़ाते हैं वो हम खूब जानते हैं। अहादीस को ना मानना, नहीं कुरान ही काफी हदीसें पढ़ के जिंदगी मुश्किल हो जाती है। शरीयत इस्लाम पे ना चल के हम अल्लाह के नबी को ईजा देते हैं, और मिशने मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा ना करके अल्लाह के नबी को तकलीफ देते हैं। हमारा मिशन मोहम्मदी तो नहीं रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माली हो गया, कमाने वाला, पैसे, स्टेटस, उन्हीं बच्चों को ला ला के जोड़े क्यों देते हैं आप जो अल्लाह के नबी की बात नहीं मानते? आप इनको आधी रोटी दीजिए पूरी रोटी की बजाय, उनको समझ आ जाएगी कि आपकी क्या अहमियत है और आपके नबी की क्या। ये माँ बाप मुजरिम है वल्लाही, और वो माएँ मुजरिम है जो अपनी बच्चियों को ऐसे कपड़े लाला कर देती हैं। और जुरत क्या, पकड़ के सारी वार्डरोब काट दीजिए, जाओ नए ले आओ, किसी और से मांग लो। जुरत कैसे आप देते हैं? आपसे 18-20 साल छोटी बच्ची आपकी मर्जी ना माने और आपको शर्मिंदा करे, और लोग सामने नहीं कहते बाद में कहते हैं फुलां आप उनकी बातें करते हैं, जरा उनके कपड़े तो देखिए और उनकी प्रोफाइल्स तो देखिए। और अल्लाह के नबी को ना कोई कहता होगा अगर यहां मौजूद होते, अल्लाह के नबी देखे आपने, जरा अपने नाम लेकर लिखे कि आपकी शिकायत जब नबी तक जाए तो उनका दिल छलनी ना होता होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम उम्महातुल मोमिनीन और अहले बैत की शान में गुस्ताखी करके लोग अल्लाह के नबी को ईजा देते हैं, क्या हमारा यही नसीब रह गया? हम खुशी नहीं दे सकते तो क्या हम गम देंगे अपने नबी को? वो तो पहले ही बेचारे तड़प तड़प कर, जिसको कह लाल लकबाख नफ्सा की कैफियत में दुनिया से गए। तो ज़रूरत है आज के मुसलमान माँ और बाप और भाई बहनों बेटियों को और औरतों मर्दों को खुद को देखने की। न जाने वहां हमारा क्या नाम होगा, आज हम जो मर्जी अपने नाम रखे बैठे। या अय्युहन नबी युकुल्ली अज़्वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। अब आ गई है मेरी आपकी आयत। पिछली आयतें लोग कहते हैं छोड़ें जी, वो तो अज़्वाज मुतहरात ही। अब कान खोल कर सुनिए आयत 59 को और 60 को। रोजे रोशन की तरह वाजे, मुबरहन क्लियर कट मैसेज है। ए नबी अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से। आप कहते हैं बीवियां तो गईं, वो तो 9 थी या 11 थी, वो नहीं चले निकाली है। साहबजादियां वो 4 बेटियां थी और फातिमा रुकैया, और उनको निकालते हैं। नहीं जी, हम नहीं सुनते, ये तो बीवियां बेटियां। इट्स ओके, आगे देख लीजिए। व निसाइल मोमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कह दो, ये आप में हैं कि नहीं, क्या नाम है इस्लाम का है मेरे आपके साथ, है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अल्लाह के नबी का हुक्म सुने। और देखिए अल्लाह ताला खुद डायरेक्ट भी हुक्म दे सकते थे, लेकिन नबी से कहलाया गया, इज्जत भी दी गई और हमें शर्म भी दिलाई गई कि अल्लाह के नबी के जरिए ये बात कह रहा हूँ। हमारे बड़े जब किसी से रिश्ता मांगते थे तो किसी बड़े को बीच में डालते थे, अम्मा आप मांगे, अब्बा आप मांगे, क्योंकि नानी होगी। हम पता नहीं नबी की तरफ से पेश किए हुए इन पर्दों और इन जिलबाबों का क्या हाल हुलिया करते हैं, ये अब हम खुद पूछें। हुक्म आगे आ गया, युदनी नाले हिन्न नमीन जला बी बी हिन्न। कह दो कि अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द इनकी शिनाख्त हो जाया करेगी, फिर ना सताई जाएंगी। और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अगर अब भी ये मुनाफिक और वो जिनके दिलों में बीमारी है, वो लोग जो मदीना में गलत अफवाहें फैलाने वाले हैं, बास ना आए तो हम आपको इनकी तबाही पर मुसल्लत कर देंगे, फिर तो वो चंद दिन ही आपके साथ इस शहर में रह सकेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बोलिए इस आयत को कहाँ ले जाएं? देखिए लोग कहते हैं कहाँ पर्दा, कहाँ है बाया, कहाँ है बुरका। ये जो लफ्ज है ना, जिलबाब, जिलाबीब, जिलबाब की जमा अरबी जुबान में। आप अभी मेरी बात के बाद पारा खत्म होगा ना, तो आप जाकर जरा डिक्शनरी से खोल कर लफ्ज जिलबाब देखिएगा। वो चादर जो सर पे डाली जाए तो पाँव तक छुप जाए, उसको जिलबाब कहते हैं अरबी की जुबान में। आप इसको इबाए की शक्ल में ढाल लें, सी के सिलाइयां, तो भी ये जिलबाब है इंशाल्लाह। आप इसको खुली मोटी बड़ी चादर जिसमें आपका एक एक अंग छुप जाए, आप उसको जिलबाब बना लें। कल लोग टोपी वाला बुरका कहते थे, वो भी जिलबाब है। अब ये कल्चर की बात नहीं, यारब कल्चर नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। और अलैहिन्ना कलर युद्ध नीन के आगे लफ्ज अला आ गया। अरबी जुबान की थोड़ी सी बारीकी है, इसको अगर कभी डिक्शनरी से समझाऊं ना तो यकीन करें कि आपका दिल अंदर से गवाही देगा कि पर्दा है कि नहीं, चेहरे का पर्दा है नहीं। क्योंकि आज चेहरे के पर्दे को लोगों ने इतना मुख्तलिफ किया कि वही बात है कि जब दिल ना माने तो हम कैसे माने। तो यहां इशारा दिया गया है कि जिन कपड़ों में घर में फिरती हो उसमें बाहर नहीं जाना। हमने मोटी चादरें खूबसूरत कर ली, इन्हीं में बाहर चले जाएंगे। लॉन के सूटों के साथ भी चादरें हैं, क्या औरत ऐसे कपड़ों में बाहर जाएगी? नहीं जाएगी। देख लीजिए आप जो भी घर में पहने हुए हैं, सीधी सी बात है घर से बाहर जाते हुए ऊपर कुछ और पहनना, उसको जिलबाब कहते हैं। कड़ी भी सजी भी मोतियों वाली मुकेश वाली चादरें जिलबाब नहीं होती। घर में पहनी है, औरतों में पहनी है, अपने जैसों में पहनी है, कोई गुनाह नहीं है। आप मोती सितारे चमक दमक लगाकर पहनिए, कोई बुरी बात नहीं है। आप ड्रेस बनाइए, आप उसमें दबका लगाइए, सलमा सितारे लगाइए, कोई बुरी बात नहीं है। बट शर्त जे क्यों नबायों के ऊपर बाहर जाते हुए एक सीधी सादी प्लेन चादर अबाया, कि जिसको देखकर कोई आपको बड़े घर की बेगम ना समझे, ये पहनना लाजमी है। जिसको ये बात समझ आ गई ना, वो उठकर ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं चलेगा। और आप खूब 6-7 पिन्ने लगा हुआ टाइट सा स्कार्फ, चमकता दमकता शिफून का सॉफ्ट सा, और वही पहन के अंदर बैठी रही कि नहीं अभी बाहर जाना है, तो नहीं पहन सकती हैं। वो आपका इनडोर ड्रेस है। आप औरतों में आपकी मर्जी, आप सर पे पहने ना पहने, इजाजत है खोलने की, लेकिन बाहर जाते हुए इसके ऊपर आपको कुछ पहनना पड़ेगा। और यहां से लोग कहते हैं कि फिर और चेहरे का पर्दा किधर है? तो ये देखिए युद्ध नींद के ऊपर जो अला लगा हुआ ना, ये चेहरा है, घूंघट निकाल दो। एक होता है इला टूवर्ड्स, एक होता है अला जो यहाँ है, किसी चीज को झुका लेना। और युद्ध नींद वही लफ्ज है जो दुनिया है, दनूफ से करीब कर लो, यानी सर पे डाली हुई चादर जो औरतें पहनती थी, इतना बड़ा घूंघट निकाल लो कि तुम्हारा चेहरा छुप जाए। लेकिन माजरत के साथ, चेहरे का पर्दा सिर्फ उसको समझ आएगा जो इससे पीछे की सारी पाबंदियां बर्दाश्त कर चुका हो। लोग इसको मुख्तलिफी मसला कहते हैं। आज तक तो उम्मत मुस्लिमा में मुख्तलिफी ना रहा। आज आप देखिए, मॉडल्स को देखने वालों को, रोल मॉडल्स को दिखाने की जरूरत पे गौर किया जा रहा है। साहबियात को देख लीजिए, नहीं देखा आपने। अज़वाज मुतहरात को नहीं देखा। सलफ सालेहीन की माओ को नहीं देखा आपने। उम्मत की माओ को नहीं देखा। पीछे कर जाए, सिर्फ अपनी दादी या परदादी या नानी या परनानी, जो कभी आपने देखी उसको सोच लीजिए। अपनी अम्मी से कहानियां सुनिए, नानी क्या पहनती थी, दादी क्या पहनती थी। अब्बा से पूछिए आपकी परदादी क्या पहनती थी। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आयत की तफसीर को समझाने के लिए ना सिर्फ ये कि वर्बली बल्कि करके दिखाया। एक बड़ी चादर ली, सर पे डाली और सिर्फ बाई आंख थोड़ी सी खोल के कहा, ये है युतनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। यानी आंख भी एक दिखेगी और वो देखने के लिए होगी, दिखाने के लिए नहीं होगी। ये नहीं कि निकाब के अंदर मोटी मोटी आंखों पे कजले सुरमे और पता नहीं क्या कुछ लगा के और हसीन करके दिखाओ। आंख दिखा सकती है औरत, लेकिन उस पर सुरमा भी नहीं डला होगा। शर्त एक है कि लोग उसको ये ना देखें कि चलो आंखें इतनी प्यारी हैं तो और क्या होगा। याद रखिए, चेहरा जीनत है, छुपाए जाने वाली चीज है। चेहरा ही तो देखते हैं लोग। आप घर की हिफाजत करना चाहते हैं, आंधी ना आए, मट्टी ना आए अंदर, खिड़कियां भी बंद करें, दरवाजे भी बंद करें और मेन गेट घर का खोल दें। ये चेहरा ही है जो जंगे कराते हैं। हेलन नाम की एक औरत के बारे में मारूफ जुमला, फेस दैट लॉन्च 1000 ships, यानी एक औरत को हासिल करने के लिए हजारों शिप निकले थे और जंग लगी थी। सारी शायरी किसके बारे में है? चेहरा। बड़े बड़े बिल बोर्ड चेहरे को दिखाते हैं। लड़की देखने जाते हैं, चेहरा देखते हैं कि हाथ देखते हैं? जितनी क्रीमें घर में पड़ी हैं, ये फेस की ज्यादा है या हाथों की? ये अलग बात है कि आज पूरे जिस्म की इतनी है कि याद भी ना रहे कहाँ कौन सी लगानी थी। चेहरा चेहरा। आप देखिए, 5 से 6 फुट तक जिस्म तो छुपाते ही है ना कपड़ों से, किसी भी किस्म के। चले टाइट है ये जो पहनते हैं ना। चेहरा कितना है? 3 से 4 इंच। क्या यही छुपाना मुश्किल है? अगर जन्नत से सिर्फ 3-4 इंच पे रोक लिए गए तो क्या करेंगे? सारी जस्टिफिकेशन को एक साइड पे रखकर सोचिए। और ये जो एहराम में चेहरा खोलने का एक मुख्तलिफ ही मसला बयान होता है, ये कब है कि जब आम हालात में एक औरत चेहरा छुपाएगी? जो यहां नहीं छुपाते उनको वहां क्या छुपाना है? और यकीन कीजिए, जिस दिन आपका मेरा दिल मान गया फिर बनेगा। आप कहते हैं ये इख्तलाफी मसला है, वो अरब्स ये कहते हैं, फलां कल्चर, वो फलां तो बहुत बड़ी मारूफ स्पीकर्स हैं, लाखों लोग सुनते हैं और वो तो निकाब नहीं करती। एक जुमले में मैं आपको जवाब दे सकती हूँ इसका। अगर ये वाकई इख्तलाफी मसला है भी ना, तो पानी से धुला हुआ चेहरा, इसको खोल लीजिए। कोई हिडन, कोई जाहरी, कोई बातनी, कोई अंदर की क्रीमें, कोई बाहर की, कोई टोनर और इसके साथ पता नहीं क्या कुछ होता है, हाइड और कंसीलर नहीं लगा सकती औरत। जिन आयमाए कराम ने भी चेहरे को खोलने की रुख्सत दी, पानी से धुला हुआ चेहरा वो खोल लीजिए। किसी इमाम ने, किसी मुफ्ती ने मेकअप ज्यादा चेहरे को खोलने की इजाजत नहीं दी कि शादियों पे आप हिजाब तो पहन ले और सजे संवरे मेकअप में लुथड़े पुथड़े आप उस शादी हाल में दिखते फिरे। क्यों अपने ऊपर जुल्म करते हैं? औरत का दिल करता है अच्छे कपड़े पहने, शादियों में अच्छे मेकअप करे। सिर्फ एक पर्दा डाल दीजिए। मर्दों को क्यों दिखाते हैं? उनको दिखाते हैं जो जले कुड़े देखकर और उनके दिल पे बिजलियां गुजरे, और औरतें औरतों को देखकर न जाने क्या सोचें। याद रखिए, जब तक औरत चेहरा नहीं छुपाएगी, सेग्रीगेशन नहीं होगी। सारी महफिल में एक बापर्दा औरत आ जाए, मर्दों के हाथ कांपने लगते हैं। इनको कहिए, जरा इनको कीजिए, ये फुलां है। ये एक ऑटोमेटिक बैरियर बन जाता है, औरत का चेहरा का पर्दा। मर्द परेशान हो जाते हैं, शरीफ मर्द कभी उस महफिल में खुल के जाकर नहीं बैठेंगे जहां उनको पता हो कि कोई एक बापर्दा औरत है। पहले लोग कहते थे मस्तूरात, आज मस्तूरात नहीं तो फिर गैर मस्तूरात है। इसका उर्दू में लफ्ज देखिए, बड़ा ही अजीब सा लफ्ज बनता है। आप मस्तूरा हैं, छुपेंगी तो मस्तूरा होंगी ना। और एक दफा आप देखिए कि बाजार में जाकर जरा अगर जरूरत से जाते हैं, चेहरा छुपा कर जाएं, कभी अगली दफा आप कभी मुंह खोल के नहीं जाएंगी। जो गंदी नजरें आपको छाबड़ियों पे चीजें बेचने वालों की नजरें और दूसरों की नजरें दिखती हैं, तहफ्फुज़ है ये। आप देखिए, जिन चेहरों को इतने मर्दों की नजरें चुरा लें, वो खूबसूरत कहाँ रहेंगे? आज कहाँ दुल्हन खूबसूरत है? हजारों लाखों लगा के भी कहते नहीं, मेकअप नहीं अच्छा हुआ। पहली दुल्हनों को सोचिए, किसी मर्द की नजर नहीं पड़ती थी उस प्यारी सी बच्ची पे। कई दिन पहले उसको कमरों में छुपा देते थे, आज आखिरी वक्त तक। और वो फोटो सेशन के गंदे फितने चलेंगे अगर औरत चेहरा छुपाएगी तो। फतवे ढूंढना छोड़ दीजिए गूगल शेख से। अगर हम अज़वाजिका में नहीं, बनातिका में नहीं, तो निसाउल मोमिनीन में तो हैं। अपने दिल से पूछिए, अपनी अक्ल से पूछिए वो क्या कहती है। मेकअप प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों हैं, चेहरों पे इतना माल क्यों लग रहा है, और लोग तो बड़ी अदा से कहते हैं हमारा तो चेहरा ही लोग देखते हैं। तो याद रखिए कि पर्दे की वजह से इन सारी चीजों को रिजेक्ट करिए, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पकड़ लीजिए। आज लोगों ने निकाब को एक इश्यू क्यों बनाया, 150 यूरो का फाइन क्यों लगा, क्योंकि तरीकतुल मुसला पे चोट पड़ती है। लोग आज आपके निकाब पे क्यों परेशान है, इसलिए कि एक वक्त था कि लोग आपके स्काफ पे परेशान थे। तुर्की में स्काफ खिंचे औरतों के, आज स्काफ कोई बड़ा मसला नहीं, पूरा यूरोप मान चुका। जितने प्यारे स्काफ मैंने यूरोप में बिकते दिखे, इतने तो मैंने मक्का में भी नहीं देखे कभी, क्योंकि पिछली औरतों ने दबाव बर्दाश्त किया, उन्होंने कहा नहीं उतारेंगी, उन्होंने कहा जो ले लो। अब निकाब पे के पीछे पड़ गए, आप इस पे स्टैंड ले लीजिए, वरना कल आपकी बेटियों के कपड़े उतरेंगे। लिख लीजिए ये बातें, अपनी परदादियों पर, नानियों और पर 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 सारे इकट्ठे कर लीजिए, तो पर्दा उनकी जिंदगी का शुआर था। हमने दूसरों को रोल मॉडल बनाया तो हमारा सब बदल गया। देखिए कौन नहीं निकाब करता, सर्जन नहीं करते, पायलट नहीं करते, आर्मर्स नहीं करते, कुक नहीं करते, सनबर्न से बचने के लिए डर्माटोलॉजिस्ट नहीं आपको मशवरे देती। तो आज तो कोरोना वायरस ने हर एक को पर्दा सिखा दिया। दूसरों को जरासीम से बचाने के लिए या उनके जरासीम से बचने के लिए आप चेहरे कवर कर सकते हैं, तो गुनाहों से बचने और बचाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो चेहरे खोलने की बजाय दिल खोलने की दुआ कीजिए। आज एक पर्दादार औरत को दावत में आप बुलाकर परेशान हो जाते, कहते नहीं वो पर्दा करती है ना, फिर बाकी अनकंफर्टेबल हो, उनको अलग से बुला के खाना खिला देंगे। क्या आपने कदर की उनकी और अपनी? बदमजगी होती है औरतों में, एक औरत पर्देदार आ जाती है दूसरी औरतें परेशान होने लगती हैं। तो क्या अगर हमारे बच्चों की खुशियों में आयशा और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आ गईं तो हम कंफर्टेबल होंगे? दुआ कीजिए अल्लाह हमारे मर्दों को बाहया और औरतों को बापर्दा कर दे। आज मर्दों ने अपनी औरतों के पर्दे नोचे हैं, वो कल रो कर गए ना इकबाल के, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया। अगला शेर आपको आता है, मैं नहीं बोलती उसको। ये इस्लाम का शोर था, हमने आज इसको जिंदा करना है, इंशाल्लाह जन्नत के दर्जे मिलेंगे। लोगों से चार कदम आगे बढ़कर अल्लाह के नबी के हुक्मों पे अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आपको अल्लाह पायनियर बनाएगा, आपको जन्नतों में अजवाज और आपकी बनात की कंपनी मिलेगी, उन जैसा तो बने। तो पर्दे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, कम अज कम तो फिर अपोस ना कीजिए, मुंह खोल खोल कर अल्लाह के कवानीन पे तनकीद ना करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी नल हक का हक्कम वरजुक न इतबाह हो वारी ना बात इलम बात इलम वरजुक न इजतना बहो। तो फिर बात तो लंबी हुई, मुझे यकीन है कि लंबी हुई है, लेकिन मेरा हक बनता है कि मैं इस पे बात करूं। हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें पारा पूरा करना है। बात यह है कि मुसलमान औरत पर्दादार औरत होती है। आप आयत 59 की सारी बातें जो मैंने समअप की 5 नुक्तों में देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे। मर्दों को फितनों में मुबतला ना कीजिए, कीमती रहिए, बाहया बनिए, बाकिरदार बनिए, शर्म हया वाली रहिए, बारूब शख्सियत की मालिक होंगी आप, इज्जत करेंगे लोग आपकी, गंदी नजरों से महफूज रहेंगी आप, और अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करती रहिए, यही है आपकी मेरी इज्जत। इसके बरक्स जो मदीना के मुनाफिक थे, अगर उनकी बात यहां सामने रख दूं तो आज भी कुछ लोग इसी किस्म की निफाक वाली पॉलिसीज को आम करना चाहते हैं। तो आयत 61 में देखिए अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में कितने नाराज है। मलूनीन ऐ नमा सुकिफू उखिजु व कुत्तिलु तकतीला, इन पर फिटकार बरसाई गई जहां भी मिल जाएं और खूब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। इनसे अगलों में भी अल्लाह का यही दस्तूर जारी रहा, और तो अल्लाह के दस्तूर में हरगिज रद्दो बदल नहीं पाएगा। लोग आपसे क्यामत के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, आपको क्या खबर, बहुत मुमकिन है क़यामत बिल्कुल ही करीब हो। अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और इनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। एक बड़े से अवन को जहन में लाइए, वो कोई हामी और मददगार ना पाएंगे। इस दिन इनके चेहरे आग में उलट पुलट किए जाएंगे, जैसे कबाब की एक साइड फ्राई करके दूसरी तरफ कर दें। और देखिए चेहरों की बात हो रही है आज बार बार, हसरत और अफसोस से कहेंगे काश हम अल्लाह ताला और रसूल की इताअत करते। ये कौन है, गैर मुस्लिम? नहीं, उनको क्या लगे इससे, ये मुसलमान है जो अल्लाह और उसके रसूल की बातें ना मान सके। और कहेंगे हमारे रब, हमने अपने सरदार और अपने बड़ों की मानी जिन्होंने हमें राह रास्त से भटका दिया, कौन बड़े हैं आज हमारे इस मामले में, कौन सरदार है, कौन इन लीड्स है, वही जो हमारे दिमागों पे सवार है। चंद चमकती शक्लें, चंद स्क्रीनों पे आई हुई खूबसूरत तस्वीरें, चंद लोग खुद को मॉडल बनाकर आपके बड़े बन गए। अल्लाह उनको भी हिदायत दे। उन बेचारों तक तो दीन नहीं पहुंचा, उन पे तो कोई अफसोस नहीं, उन पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, उन तक तो हमने मैंने पहुंचना था, हम नहीं पहुंचे, हमारे कसूर है। कई दिल इतने हरे होते हैं, यकीन करें एक दफा सुनते हैं मान जाते हैं। उनको किसी ने दिया नहीं तो आप उनको बुरा क्यों कहें, वो बुरे नहीं है, हम बुरे हैं जो ऐसी चीजों को जानते बूझते प्रमोट करते हैं। परवरदिगार तो इन्हें दुगना साहब दे और इन पर बहुत बड़ी लानत डाल दे, यानी वहां कहेंगे अल्लाह जिनकी वजह से हम भटके तो उन पर दुगना डाल दे। या मनु ए लोगो, इन लोगों जैसे ना बन जाओ जिन्होंने मूसा को तकलीफ दी, बस जो बात उन्होंने कही थी अल्लाह ने इन्हें इससे बरी फरमा दिया, यानी बेगुनाह थे वो और अल्लाह के नजदीक बाइज्जत थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह। अब सूरत का खात्मा देखिए, अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। वकूलु कौलन सदीदा, और सीधी सीधी यानी सच्ची बातें किया करो, हैंकी पैंकी की इजाजत नहीं है दीन में। और दीन सिखाने वालों को बिल्कुल स्पार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड अल्लाह और उसके रसूल की बातें विदाउट एनी एग्जेजुरेशन बता देनी चाहिए, ना तो शिद्दत बरती है। और हजरत फातिमा के नाम पर ऐसी रिवायतें करें कि कभी उनके बाल ही ना देखे आसमान ने और जमीन ने, ये भी गलत बातें हैं। बी बैलेंस्ड, औरतों में औरत कैसी लगे, मर्दों में औरतों का क्या हिजाब है, घर के मर्दों में कैसी, बाप के सामने बेटियां के सुलिए में आए बहने, बस ये बता दीजिए, उसके बाद वो जाने उनका काम। और जब तुम बात सीधी करोगे तो क्या होगा, कूलु कौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, ताकि अल्लाह तआला तुम्हारे काम संवार दे, अल्लाह हमारे भी काम संवार दे और तुम्हारे गुनाह माफ फरमा दे, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा इसने बड़ी मुराद पा ली। तो सूरत कैंट पे क्या खूबसूरत हुक्म दे दिया अल्लाह ने मोमिनीन को, पहले मोमिनात की बातें थी, अब मर्दों को कहा जा रहा है नंबर एक तकवा लाओ, सीधी बात करो, मत डरो बीवी से और बेटियों से, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। नतीजा क्या है, तुम्हारे अमाल की इसलाह होगी, गुनाहों की माफी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ऐसे ही बाप भाई शोहर कामयाब होंगे जो अल्लाह के हुक्मों पे कान रखेंगे, और आखिर में फिर एक अमानत की अदायगी का तज़किरा है। इन्ना रद्दना लअमानत अलस समावाति वल अर्दी वल जिबाल, हमने अपनी अमानत को आसमानों पर, जमीन पर और पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने इसके उठाने से इनकार कर दिया और इससे डर गए, मगर इंसान ने इसे उठा लिया, वो बड़ा ही जालिम और जाहिल है। ये इताअत की अमानत थी, ये इसलिए कि अल्लाह ताला मुनाफिक मर्दों औरतों और मुशरिक मर्दों औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों औरतों की तौबा कबूल करे, और अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला और मेहरबान है। तो ये थी सूरत अल अहज़ाब, जिसके बाद काफी अरसा तक कोई हुक्मी सूरत नहीं आएगी, मक्की सूरतें आ गए। क्या सीखा हमने इससे, पहली बात है कि अल्लाह ताला के इरशादात की रोशनी में उसवाए हसना पे भी अमल करना है, और ईमान वाली औरतों मोमिनीन और मोमिनात के उसवे हसना पे चलना है। अल्लाह के नबी के पैगाम को रद्द करना गुनाह अजीम है। पर्दे के अहकामात सीखे, अल्लाह तौफीक दे दे मानने की। सलातु सलाम की फजीलत देखी, और फराइज हदूद अमानते हैं इसको पूरा करना है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें खायनीन में से ना उठाए। अगली सूरत सबा है, सूरत अल अहज़ाब के मामले में ऐसी लगेगा जैसे खाने के बाद स्वीट डिश, एपेटाइजर था पहले, मील था उसके बाद, और अब एक चीज है। सूरत सबा क्या है, शुक्र और नाशुक्र के बीच के अंदर के लोगों की कहानी है। 34 नंबर की सूरत है, 54 आयते हैं इसमें। आइए देखते हैं नाशुक्रियों की क्या सजा मिलती है, नतीजा कौमों का जवाल होता है। तो सूरत सबा का पैगाम क्या है कि नाशुक्रियों का नतीजा हमेशा कौमों के जवाल की सूरत में होगा। आज उम्मत मुस्लिमा की औरतों ने टांगे तक नंगी कर ली, फिर भी लोग उनको कबूल ना कर सके, वो तो आपको आपके दीन से हटाएंगे। जवाल मुसलमानों को उस दिन से ही बड़ा जब से औरतें और मर्द अल्लाह की पाबंदियों से नाबलत हो गए। अल्लाह में इस मजीद इस नाकदरी से बचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द वमा फिल अर्दी वलहुल हम्दु फिल आखिरती वहुवल हकीमुल खबीर। तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए हैं। देखिए अलहम से शुरू होने वाली एक और सूरत, तमाम तारीफ़ इस अल्लाह के लिए लायक है जिसकी मलकियत में वो सब कुछ आसमानों और जमीन में है, آخرت میں بھی تعریف اسی کے لیے ہے، وہ بڑی حکمتوں والا اور پورا خبردار ہے، جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے اترے اور جو چڑھ کر اس میں جائے، وہ سب سے باخبر ہے اور مہربان نہایت بخشنے والا۔ کیا پتہ چل رہا ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو مجھے اس میں دعوت دے رہے ہیں، کہ یعنی کہہ لیجئے کہ کونی آیتیں ہیں۔ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور کر لوگے تو تمہیں اللہ کا پیار اور اس کی محبت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ کفار کہتے ہیں ہم پر قیامت نہیں آئے گی، آپ کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، وہ یقیناً تم پر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔ تو کیا اس کو میرے آپ کے دل میں اٹھنے والے خیالات کا نہیں پتا؟ تاکہ وہ ایمان والوں اور نیکوکاروں کو بھلا بدلا عطا فرمائے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ اور ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی جنہوں نے کوشش کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے المناک سزاؤں کا عذاب ہے، اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ غالب خوبیوں والے کی راہ کی راہبری کرتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ ہم اللہ کی آیتوں کو مانیں، نہ کہ ان کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں اور بھی سرکشیاں کرنے لگ جائیں۔ تو آیتوں کو نیچا دکھانا ایک فتنہ اور گمراہی ہے۔ اگر آپ سورۃ سبا کی آیت 5 کی روشنی میں دیکھیں تو آج لوگ کس طرح اللہ کی آیتوں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہی کوئی نہیں، اللہ سب کو جنت میں لے جائے گا، خام خواہ ڈراتے رہتے ہیں۔ پردہ وردہ کچھ نہیں ہوتا، پردہ تو دل کا ہے، اللہ نہ کرے پردے دلوں پہ پڑے، پیچھے پڑ کے آئیں قلوب نہ غلف، پھر تو حق سمجھ ہی نہیں آئے گا، ابھی تو بیٹھتے ہیں پھر تو بیٹھیں گے بھی نہیں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں مولویوں نے دین اور شریعت کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ لفظ مولوی کہنا کتنا ہمارے ہاں رونت کا انداز ہے، کیا یہ اللہ کی آیتوں کو نیچا نہیں دکھاتے آپ؟ اسی طرح شراب اور سود کی حرمت کہاں لکھی ہے، دکھاؤ بتاؤ، پڑھا کیا آپ نے؟ کتنی حدیثیں آپ نے پڑھ لیں، کتنی بکس یا سطح کی پڑھی؟ تو جب بغیر پڑھے لوگ بحثیں کرے تو اصل میں اللہ کے دین کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اور کفار نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک ایسا شخص بتلائیں جو تمہیں یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ تم جب بالکل یہ ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر سے ایک نئی پیدائش میں آؤ گے۔ بڑی حیرت ہے، یعنی ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اس نے ہی اللہ پر جھوٹ باندھ لیا یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب میں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ کیا بس وہ اپنے آگے پیچھے آسمان و زمین کو دیکھ نہیں رہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ یقیناً اس میں پوری دلیل ہے ہر اس بندے کے لیے جو دل سے متوجہ ہو۔ اللہ ہمیں متوجہ کر دے، دل دماغ ہمارا اس میں لگ جائے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام پر اپنا فضل کیا ہے، پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح پڑا کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ تو پوری پوری زرہیں بنا اور جوڑوں میں اندازے سے رکھ، تم سب نیک کام کرو، یقین مانو کہ میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان کا تذکرہ یہاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ بھی دنیا اور دنیا کی نعمتیں مل سکتی ہیں، جو کہ آج ہم لوگوں نے بالکل الٹ سوچنا شروع کر دیا۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات ان کی ماتحتی میں ان کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے بھی جو ہمارے حکم سے سرتابی کرے ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ کیا ترقی تھی اس دور میں، آج تو اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ سلیمان چاہتے تھے وہ جنات تیار کر دیتے تھے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولوں پر جمی بھی مضبوط دے گئے۔ اے آلِ داؤد، اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو، میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نہ کسی نے دی، سوائے گھن کے کیڑے کے دیمک، جو ان کے ایسا کچھ کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جنوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ کیا پتہ چلا کہ انسان تو انسان ہے، جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب۔ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو آیت 15 کا یہ آخری حصہ کریے، عربی میں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پڑھتے ہوئے۔ کلو میرے اس کے رب کم وشکر لہو بلدتن طیبتن ورب غفور۔ بس اتنا سچم بنا دے، دو عربی کے لفظ، تو آپ کو اللہ پہ پیار آئے گا انشاءاللہ۔ लेकिन उन्होंने रूगरदानी की तो हमने इन पर जोर के सैलाब का पानी भेज दिया और हमने इनके हरे भरे बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जो बदमजा मेवों वाले और बकसरत छाव और कुछ बेरी के दरख्तों वाले थे। हमने इनकी नाशुक्री का बदला इनको दिया। हम ऐसी ही सख्त सजा बड़े नाशुक्रों को ही देते हैं, तो नेमतों की नाकदरी से नेमतें छिन जाती हैं। आज हमारे ऊपर यही हो रहा है। हम औरतों ने मर्दों ने जब दीन की चीजों पे अमल छोड़ा, गैरों ने उस पर पाबंदियां लगा दी, अब करके दिखाओ। तो अल्लाह ताला हमें मानने वाला बना दे। और हमने इनके और इनकी बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दे रखी थी चंद बस्तियां और आबाद कर रखी थी जो बरसरे राहे जाहिर पर थी, यानी हाईवे पे थी, और इनमें चलने की मंजिलें मुकर्रर कर दी। इनमें रातों और दिनों को बामनो अमान चलते फिरते रखो। लेकिन उन्होंने कहा है, हमारे परवरदिगार हमारे सफर दूर दराज कर दीजिए। एडवेंचरस लोग होते हैं ना, वो ऐसी नाशुक्रियां करते हैं। चूंकि खुद उन्होंने अपने हाथों अपना बुरा किया, इसलिए हमने इन्हें गुज़श्ता अफसानों की सूरत में कर दिया, यानी अब तो उनका नाम भी नहीं मिलता, और इनके टुकड़े उड़ा दिए। बिला शुबा हर एक सब्र शुक्र करने वाले के लिए इस माजरे में बहुत सी इबरतें हैं, यानी ये कौम हलाक कर दी गई। जैसे आज हमारे यहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और इस तरह की रोइंस है ना, तो मक्का वाले इस कौम के किस्से सुनते थे, इसीलिए उनको इबरत दी गई कि ये जो कौमें बड़े बड़े अपने वक्त के नाम थे, सुपर पावर्स थी, इनको अल्लाह ने नाशुक्रियों की वजह से तबाह किया और शैतान ने इनके बारे में अपना गुमान सच्चा कर दिखाया। ये लोग सब के सब इसके ताबेदार बन गए सिवाय मोमिनों की एक जमात के। शैतान का इन पर कोई जोर ना था, मगर इसलिए कि हम इन लोगों को जो आखरत पर ईमान रखते हैं मालूम कर लें, इन लोगों में से जो इससे शक में है और आपका रब हर चीज पर निगहबान है। तो अल्लाह ताला चुने हुए लोगों को कब पकड़ता है? जब अल्लाह ताला की बात को वो बदल देते हैं। कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा जिनका तुम्हें गुमान है सबको पुकार लो, यानी जब अल्लाह की पकड़ आती है, कोई आफत आती है, वबा आती है, तो फिर बुलाओ सबको। ना तो इनमें किसी का आसमानों और जमीनों में से एक जर्रे का इख्तियार है, ना इनका इसमें कोई हिस्सा है, ना इनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। दरख्वास्त शिफात भी इनके पास कुछ नफा नहीं देती सिवाय इनके जिनके लिए इजाजत हो जाए। यहाँ तक कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाती है तो पूछते हैं, तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फरमाया? जवाब देते हैं, हक फरमाया और वो बुलंदो बाला और बहुत बड़ा। जब फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म सुनते हैं तो उस वक्त जो उनके दिल पे घबराहट है उसका जिक्र इधर चल रहा है। आज कुरान पढ़ते हुए हमारे दिल डरे ना डरे, फरिश्ते अल्लाह ताला का हुक्म सुनकर घबराने लगते हैं। पूछिए कि तुम्हें आसमानों और जमीन से रोजी कौन देता है? पूछिए खुद से, कितना इंसान अपने आप को बड़ा समझता है। खुद जवाब दीजिए कि अल्लाह ताला। सुनो, हम या तुम या तो यकीनन खुली हिदायत पर हैं या खुली गुमराही में हैं। कह दीजिए हमारे किए हुए गुनाहों के बारे में तुमसे कोई सवाल न किया जाएगा, न तुम्हारे अमाल की बाज़ पुरस हमसे की जाएगी। इन्हें खबर दे दीजिए कि हम सबको हमारा रब जमा करके फिर हम में सच्चे फैसले कर देगा, वो फैसले चुकाने वाला है और दाना। कह दीजिए, अच्छा मुझे भी तो इन्हें दिखाओ जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहरा कर इसके साथ मिला रहे हो। यानी ऐसे लग रहा है कि हुज्जतें तमाम हो रही है मुशरिकों पे। ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि वही अल्लाह है गालिबा हिकमत, यानी इस कायनात में शिर्क की एक कतरा भर भी जगह नहीं है। हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। हाँ, मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत बेइल्म है। जरा से इस पे चंद सेकंड गौर करें, सच है ना? और अल्लाह की बात सच ना हो ये कैसे हो सकता है? आज बेइल्मी की वजह से शिर्क फैल गया और हमें खबर ही ना हो सकी। फिर दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां, हमने आपको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। हाँ, मगर ये सही है कि लोगों की अक्सरियत बेइल्म है। पूछते हैं कि वो वादा है कब? सच्चे हो तो बताओ, यानी दिल नहीं मानता था कि क्यामत आए। जवाब दीजिए कि वादे का दिन ठीक मुअय्यन है, ना तुम पीछे हट सकते हो और ना आगे बढ़ सकते हो। और काफिरों ने कहा, हम हरगिज इस कुरान को मानेंगे नहीं। देख लीजिए, कल भी कहा आज भी कहा, वकाल लसीना कफरू लन नोमिन बिहाजल कुरआन। और काफिरों ने कहा, हम हरगिज ना तो इस कुरान को माने ना इससे पहले की किताबों को। ऐ देखने वाले, काश के तू इन जालिमों को इस वक्त देखता। अब मंजर कशी है मैदाने महशर की, जबकि ये अपने रब के सामने खड़े हुए एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे। कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे, अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते। कोसने दे रहे हैं, एक दूसरे को वजह बना रहे हैं। ये बड़े लोग इन कमजोरों को जवाब देंगे, क्या तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद हमने तुम्हें इससे रोका था? नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। इसको भी चंद सेकंड बाद में गौर कीजिएगा, लिस्ट में डाल दीजिए अपनी आयत टू थिंक। आज हम जिनके पीछे चलते हैं वो हमें को मजबूर थोड़ी करते हैं। तुम अपनी मर्जी से अपने नफ्स की इश्तेहा में चलते हैं उनके पीछे। इसके जवाब में ये कमजोर लोग इन मुतकब्बिरों से कहेंगे, नहीं नहीं बल्कि तुम्हारा दिन रात मकरो फरेब से मैं अल्लाह तआला के साथ कुफर करने और इसके शरीक मुकरर करने का हुक्म देना हमारी बेईमानी का बायस हुआ। ऐसा ही है, जब दिन रात लोगों के लिए ऐसी चीजें पेश की जाएंगी ऐसी फैशन के नाम पे और कभी किसी दूसरे नाम पे, तो फिर ईमान तो कमजोर होता ही है और इंसान फिर उसके असर में आता है। वहां जाकर कहेंगे तुम्हारे डिजाइन देख देकर हम परेशान होते थे और वो इनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और अजाब को देखते ही सब के सब दिल में पशेमान हो रहे होंगे, सब फॉलोअर्स भी और मॉडल्स भी और जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो भी। और काफिरों की गर्दनों में हम तौक डाल देंगे, इन्हें सिर्फ इनके किए कराए अमाल का बदला दिया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह दुनिया में आंखें खोल दे। और हमने तो जिस बस्ती में भी जो भी आगाह करने वाला भेजा, पीछे से हम पढ़ते आ रहे अंबिया के किस्से और उसी में ये बात सच थी, वहां के खुशहाल लोगों ने यही कहा कि जिस चीज के साथ तुम भेजे गए हो हम इसका कुफर करने वाले हैं। देख लीजिए ज्यादा मसला खुशहाल लोगों को होता है, दूसरे बेचारे क्या कहेंगे। और कहा हम माल और औलाद में बहुत बड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता कि हम अजाब दिए जाए, यानी इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है अपने ऊपर, कहते हैं हमें तो अल्लाह भी नहीं पकड़ सकता, दुनिया ले तो पकड़ ही नहीं सकते। कह दीजिए कि मेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी कर देता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और बात ये है वमाम वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा, और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों से करीब कर दे, यानी हम तुम्हारे माल और औलाद से इंप्रेस नहीं होते क्योंकि खुद ही अल्लाह ने दिए हैं। हाँ जो ईमान लाए और नेक अमल करे इनके लिए इनके अमाल का दोहरा जर है और वो निडर और बेखौफ होकर बाला खानों में रहेंगे, और जो लोग हमारी आयतों के मुकाबले की तगोदो में लगे रहते हैं यही हैं जो अजाब में हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह किसी भी तरह हमारा इनमें हिस्सा न डालना, जानते बूझते या अनजाने में हम कहीं अल्लाह के दीन के खिलाफ ना हो जाए। किस तरह की बातें करके इंसान देखिए अपना मुकाम अल्लाह तला की निगाहों से हटा लेता है और कम कर लेता है। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है, तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह ताला इसका पूरा पूरा बदला देगा और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। अक्सर लोग कहते हैं फिर कमाएं कैसे, जैसे एक दुकानदार पे किसी की बात हुई कि आप ये क्यों औरतों की इतनी बड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं और हर जोड़े के ऊपर एक औरत खड़ी की है, कहने लगे बाजी बिकते नहीं है, तो पहले कैसे बिकते थे, कॉटन तो वही है सिल्क तो वही है। तो ये परसेप्शन बना दिया गया कि जब तक एक औरत ना हर जोड़े के साथ मॉडल बनाकर पेश की जाए तब तक चीज नहीं बिकती, और वही चीज जो 500 की थी वो 5,000 की हो गई। कॉटन तो आज भी जमीन से वैसे ही आगता है, ऊपर के खर्चे मार्केटिंग और ये सारी शो बिजनेस है उसमें आपका पैसा जाता है। सोचने की बात है कि हम छोटी छोटी बातों में कहाँ कहाँ अल्लाह को नाराज कराते हैं, और इन सब को अल्लाह इस दिन जमा करके फरिश्तों से दरियाफ फरमाएगा क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे, वो कहेंगे तेरी जात पाक है, हमारा तो वली तू है ना कि ये, बल्कि ये लोग जिन्नों की इबादत करते थे, इनमें से अक्सर कोई नहीं पार ईमान था, बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए किसी किस्म के नफे और नुकसान का मालिक ना होगा, और हम जालिमों से कह देंगे कि इस आग का अजाब चखो जिसे तुम छुटलाते थे। अल्लाह अकबर, बिल्कुल क्यामत का दिन ऐसे लगता है कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और आप देखिए दुनिया में लोग एक दूसरे को वजह बनाए ना बनाए माने ना माने वहां सब एक दूसरे के ऊपर अपने मुर्दे डाल रहे हैं, और जब इनके सामने हमारी साफ आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं कि ये ऐसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के माबूदों से रोक देना चाहता है, इसके सिवा कोई बात नहीं, और कहते हैं ये तो घड़ा हुआ झूठ है और हक इनके पास आ पहुंचा, फिर भी काफी लोग यही कहते हैं ये तो खुला हुआ जादू है। और इन मक्का वालों को ना तुमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, ना इनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया, और इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झुटलाया था, और इन्हें हमने जो दे रखा था ये तो इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुंचे। हम कहते हैं ना आज बहुत तरक्की है, अल्लाह कहते हैं पहले लोगों को मैंने ज्यादा दिया था, बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया, फिर देख लो मेरा अजाब कैसा सख्त था। कह दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात की नसीहत करता हूँ। अब सूरत का खात्मा है और इसमें बहुत ही जैसे कह लीजिए कि पेनिट्रेटिंग स्टाइल है नसीहत सुनने और सुनाने का, और वो नसीहत क्या है कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद छोड़कर दो दो मिलकर यानी बडीज बन जाओ, या तन्हा तन्हा खड़े होकर सोचो तो सही, अकेले में बैठकर बंदा सोचे तो सच खुलता है दिल पे। तुम्हारे इस रफीक को कोई जुनून तो नहीं है, वो तो तुम्हें एक बहुत बड़े सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाले, बस वो लोग कहते हैं दीन की बात करने वाले बहुत सख्त हो जाते हैं, बड़े रिजिड हो जाते हैं, बहुत ही सख्त बात कहते हैं। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहा है कि उसको तुमसे क्या लेना है। हाँ, अब उसको दिख रहा है कि तुम इस जरासीम का शिकार होकर मरने वाले हो, तो क्या वो तुम्हें कड़वी गोली ना दे? डॉक्टर को कोई कह सकता है कि आप मेरे दुश्मन हैं, आप मुझे कड़वी गोलियां देते हैं? तो कभी दावत इल्लाह वाले के साथ भी यही मामला सोच लें, तो हम उसको अपना मुखलिस और मुहसिन समझें। कह दीजिए जो बदला मैं तुमसे मांगू वो तुम्हारे लिए है, मेरा बदला तो अल्लाह के जिम्मे है, वो हर चीज से बाखबर और मुत्तले है। कह दीजिए कि मेरा रब हक यानी सच्ची वही नाजिल फरमाता है और वो हर गैब का जानने वाला है। कह दीजिए कि हक आ चुका, बातिल न पहली बार उभरा न दोबारा उभर सकेगा, क्योंकि इस दुनिया में बातिल की जगह ही नहीं है। कुल जाल हक वमा युब्दिल बातिल वमा युईद कुल इन दलल तो फाइन दिल्लु अला नफसी। कह दीजिए अगर मैं बहक जाऊं तो मेरे बहकने का वबाल मुझ पर ही है, और अगर मैं हिदायत याफ्ता हूँ यानी राह रास्त पर हूँ, अगर मैं राह हिदायत पर हूँ तो बस अब इस वही के जो मेरा परवरदिगार मुझ पर करता है, और वो बड़ा ही सुनने वाला और बहुत करीब है। और अगर आप वो वक्त मुलाहिजा करें, फिर आखरत का एक मंजर क्यामत के दिन जो होने वाला, क्या होगा उस दिन जबकि ये कुफार घबराए फिरेंगे और फिर निकल भागने की कोई सूरत ना होगी, और करीब की जगह से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस वक्त कहेंगे कि हम इस कुरान पर ईमान लाए, लेकिन इस कदर दूर जगह से मतलूबा चीज कैसे हाथ आ सकती है? जैसे हमारे यहाँ मुहावरा है ना कि अब पछताए क्या हो तब तो चिड़ियां चुग गई खेत, जहन्नुम के दरवाजे में जाके समझ आया कि कुरान सच कहता था तो क्या फायदा। इससे पहले तो उन्होंने इसे कुफर किया था और दूर दराज से बिन देखे ही फेंकते रहे, यानी अटकल पच्चू हैं। दलाइल की तो बात ही नहीं थी हमारी जिंदगियों में, जब कुरान की दलील सामने आए तो इस आयत को समझ लिया करें कि जो बात किसी की सुनी सुनाई करते हैं उसमें दलील है या कुरान की बात में दलील है। इनकी चाख्त और इनके दरमियान पर्दा हाइल कर दिया गया, जैसे कि इससे पहले भी इन जैसों के साथ किया गया, वो भी इन्हीं की तरह शक और तरद्दुत में पड़े हुए थे। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे दिलों के शक और तरद्दुत खत्म कर दे। तो ये थी सूरत सबा, कैसे न शुक्रियों की सजा मिली कि अच्छे बाग बुरे बागों में चले गए। आज उम्मत मुस्लिमा भी इसी की मिसाल बनी हुई है। इतना प्यारा दीन, इतनी प्यारी शरीयत दी, इतना प्यारा शरीयत का बाग था, हमने एक एक करके हर फूल उचक के फेंक दिया, और आज परेशान है कि पौधे पे बहार नहीं है दीन के। तो क्या सीखा? अल्लाह की सिफात बहुत आला, हक को ना मानने वालों की जहालत देखी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर इनामात इलाही देखे, कौम सबा का तफसीली जायजा लिया, इबलीस और इसका आजम क्या है कि मैं तो अपने साथ लेके जाऊंगा जहन्नुम में लोगों को, और जिद और हट धर्मी मुनकिरीन हक का शिवा, अल्लाह हमें इससे बचाए। अगली सूरत बहुत ही रकीक सूरत है, सूरत फातिर भी कहते हैं और सूरतुल मलाइका भी कहते हैं। इसमें फरिश्तों की कुछ सिफात का भी जिक्र है, हक और बातिल की तकाबुल है, इसमें दो दो चीजों का फर्क है, और अल्लाह तला का नाम है फातिर, अल फातिर। तो सूरत बड़ी प्यारी है, और इसमें आप देखेंगे कि हिदायत के बाद भी इंसानों के जो तीन गिरोह हो जाते हैं वो कौन से हैं, और इंशाल्लाह वहां पहुंच कर अपने लिए रो रो के दुआ करनी है कि अल्लाह मुझे हिदायत के बाद गुमराह ना करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो इब्तिदा से आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फरिश्तों को अपना पैगंबर यानी कासिद बनाने वाला है। मखलूक में जो चाहे ज्यादती करता है, अल्लाह ताला यकीनन हर चीज पर कादिर है। बात क्या है? मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर्रहमा, अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे सो इसको कोई बंद करने वाला नहीं, फला मुमसिका लहा, कोई इसको बंद नहीं कर सकता, और फला मुरसिला लहू मिन बादिही, और जिसको बंद कर दे तो इसके बाद कोई इसको जारी करने वाला नहीं, और वो ही गालिब हिकमत वाला। इनडायरेक्टली आपको मुझे सिखाया जा रहा है कि लोगों से डरना छोड़ दो, जो अल्लाह तुम्हें देना चाहता है लोग तुम्हें नहीं दे सकते, और लोग देना चाहे अल्लाह ना देना चाहे तो कोई दे नहीं सकता और कोई रोक नहीं सकता, गलबा और हिकमत उसी की है। लोगों तुम पर जो इनाम अल्लाह ने किए इनको याद करो, क्या अल्लाह के सिवा और भी कोई खालिक है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रोजी पहुंचाए? इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहां उल्टे जाते हो, यानी फिर उस खालिक को छोड़कर मखलूक का डर और उसकी उम्मीद रखते हो दिलों में। और अगर ये आपको झुटलाए तो आपसे पहले के तमाम रसूल भी झुटलाए जा चुके, तमाम काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है, इसमें आपको ये अंदाज बहुत मिलेगा। या यूहन्नास, लोगो अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम्हें जिंदगानी है, दुनिया धोखे में ना डाल दे और न धोखे बाद शैतान तुम्हें गफलत में डाल दे। है ना आज धोखा, चंद दिन के लिए शैतान के हाथों में तरने वाले बनते हैं और फिर हमेशा की आग ना हो। याद रखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन जानो। वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए ही बुलाता है कि वो सब जहन्नुम वासिल हो जाएं। जो लोग काफिर हुए इनके लिए सख्त सजा है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए इनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है। तो शैतान का जिक्र इस सूरत के शुरू में ही आ गया, तो शैतान की पैरवी का फितना पीछे भी देख चुके, यहां तक आ गया। शैतान के पसंदीदा काम क्या है? नंबर एक, वसवसे डालना, शादी ब्याह की रसूमात के नाम पर खूब अल्लाह की नाफरमानियां करवाना, सालगिरह वैलेंटाइन डे जैसी खुराफात को पुरकशिश बनाना, मरने की हिंदुआना रस्में अलगरज हर वो काम करवाना जिससे अल्लाह से दूरी हो। अल्लाह ताला सवाल करते हैं, अफा मंजूजीना लहू सू अमली ही, क्या बस वो शख्स जिसके लिए इसके बुरे अमाल मुजयन कर दिए गए बस वो इन्हें अच्छा समझता है, क्या वो हिदायत याफ्ता शख्स जैसा है? यानी शैतान का एक काम बुरे कामों को खूबसूरत करना भी है। यकीन मानो कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे राह रास्त दिखाता है। बस आप इन पर गम खाकर अपनी जान हलाकत में ना डालिए। ये जो कुछ कर रहे हैं इससे यकीनन अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है, और अल्लाह ताला ही हवाएं चलाता है जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम बादलों को खुश्क जमीन की तरफ ले जाते हैं और इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देते हैं। इसी तरह दोबारा जी उठना भी है। तो देखिएगा जरा कैसे बुरे अमल खूबसूरत बनते हैं। मॉडर्न माशरों के फितने, इश्तहारात पर चलने वाली चीजों का आम हो जाने का फितना, जो चीज एडवर्टाइज होती है लोग उसी को लेने चल पड़ते हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं आयत 8 में, भला कुछ ठिकाना है उस शख्स की गुमराही का जिसके लिए इसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया हो और इसे अच्छा समझे। फिर इसी तरह देखिए तरबियत के अंदाज बदल जाने का फितना, आज बदल गए माँ बाप भी? हमारे माँ बाप से तो आज के माँ बाप बहुत मुख्तलिफ हैं, ये तो आप भी कहते होंगे। बुरा अमल खूबसूरत लगने का फितना है आज उम्मत में, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में तकरीबात के नाम पर हुदूद को तोड़ने का फितना। मुझे कुछ अर्सा पहले किसी ने कुछ भेजा था, मैं शेयर नहीं कर सकती आपसे। अगर मुझे यकीन ना होता ना भेजने वाले की सच्चाई का, तो मैं मानती ना कि ये अपने मुसलमान मुल्कों की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और स्कूल्स के फिगर्स हैं। क्या वो ड्रेसेस जो कभी आपने इंडियन और छोड़ दीजिए इंग्लिश मूवीज में ना देखे, वो आज आपकी बच्चियां अपने स्कूल के कंसर्ट्स और प्रोग्राम्स में पहने? फिर माँ बाप के हम क्या कहते हैं, हम क्या करें, मजबूर है तो फिर दिन ब दिन आप मजीद मजबूर होने के लिए तैयार रहिए। जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता हो तो अल्लाह ही के लिए सारी इज्जत है, तमाम तर सुथरे कलेमात इसी की तरफ चढ़ते हैं और नेक अमल इनको बुलंद करता है। जो लोग बुराइयों के दावघात में लगे रहते हैं इनके लिए सख्त तर अजाब है और इनका ये मकर बर्बाद हो जाएगा। बगैर समझाए समझ में आने वाली आते हैं। आज हम क्या कहते हैं, इज्जत का मसला, इज्जत मिलेगी, अच्छे ऐसे कपड़े पहनेंगे इज्जत होगी, मॉडर्न लगेंगे इज्जत होगी। तो नोट कीजिए, इज्जत पाने की शरायत सूरत फातिर आयत 10 में, अमल सालिह करने वालों को इज्जत मिलेगी, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पूरे करने से इज्जत मिलेगी, कुरान जिक्र इलाही की बेहतरीन सूरत आपको इज्जत दिलाएगा, और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने वालों को इज्जत मिलेगी। लेकिन दौरे हाजिर का फितना क्या कि इज्जत पाने के लिए जाहिलियत तबर्रुज और कुफार की रस्म व रिवाज की पैरवी करते हैं। लोगो अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से फिर नुतफे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े यानी मर्द औरत बना दिया। औरतों का हामिला होना और बच्चों का तवल्लुद होना सब इसके इल्म से ही है, और जो भी बड़ी उम्र वाला उम्र दिया जाए और जिसकी उम्र घटे वो सब किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला पर ये बात बिल्कुल आसान है, यानी अल्लाह के हिसाब कितने सीधे कितने क्लियर है। और बराबर नहीं दो दरिया, ये मीठा है प्यास बुझाता है और पीने में खुशगवार, और ये दूसरा खारी है कड़वा, तुम इन दोनों में से ताजा गोश्त खाते हो, सी फूड की तरफ इशारा है, और वो जेवरात निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो, और आप देखते हैं कि बड़ी कश्तियां पानी को चीरने फाड़ने वाली इन दरियाओं में हैं, ताकि तुम इसका फजल ढूंढो और ताकि तुम इसका शुक्र अदा करो। कायनात में फैली हुई चीजें बोल बोल के बता रही हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और आफ्ताब व महताब को इसी ने काम में लगा दिया है। हमने अगर सूरज चांद को लगाना होता तो सोचिए दुनिया कैसी होती। हर एक मियाद मुअय्यन पर चल रहा है, यही है अल्लाह तुम सबका पालने वाला। इसी की सल्तनत है जिन्हें तुम इसके सिवा पुकार रहे हो, वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। आज इफ्तारी में जब फ्रेश डेट्स खोलेंगे ना, तो जब आदि करते हैं ना खजूर को, तो गुठली के ऊपर एक पतला सा छिलका उतर आता है, ये है कितमीर। सूखी होगी ना तो तिनके की तरह होगी फतील, और पतला सा फ्रेश डेट में होगा तो ये है कितमीर। अल्लाह कहता है ये कितमीर भी को बना के दिखाए। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तुम इन्हें पुकारो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं। आज तजुर्बा कर लीजिए, कहीं किसी कब्र पे जाकर कोई आवाज आती है अंदर से, और अगर बिलफर सुन भी लें तो फरियाद जैसी नहीं कर सकेंगे, बल्कि क्यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगे। आपको कोई भी हक ताला जैसा खबरदार खबरें ना देगा। देखिए इन आयतों का तर्जमा क्या करते होंगे वो लोग जो मजहब भी जानते हैं और उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतों में मुलविस हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको मुझे एक पुकार दी, बड़ी प्यारी फेमस आयत है इस बारे की, इस सूरत की, इसको अलग से भी लिख लिया करें। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। ए लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो, बेगर्स हो, और अल्लाह बेनियाज और खूबियों वाला है। अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे, और ये बात अल्लाह को कुछ भी मुश्किल नहीं लगती। तो जो इतना मजबूर हो फिर इतना अकड़े, इतनी मर्जियां आपके मुलाजिम करें, आपके किसी हुक्म के मुकाबले में जितनी हम अल्लाह के हुक्मों पे करते हैं तो कब कौन को छुट्टी करा चुके होते। कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और अगर कोई बोझ से लदा हुआ दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो इसमें से कुछ भी ना उठाएगा, अगरचे कोई कराबदार ही क्यों ना हो। एयरपोर्ट और ट्रेन स्टेशन याद कीजिए, बड़े बड़े सामान उठाए हुए लोग फिर रहे होते हैं, और साफ लिखा था अपना बोझ किसी और को ना दीजिए, किसी का सामान आपने नहीं लेना। क्यामत के दिन वो रिश्तेदार, वो प्यारे, वो शौहर, वो बीवियां जिनको खुश करने के लिए अल्लाह और रसूल की नाफरमानियां की, वो वहां बेजार होंगे, बेन्यास होंगे। लेकिन आप तो सिर्फ उन्हीं को आगाह कर सकते हैं जो गायबाना तौर पर अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं, और जो भी पाक हो जाए अपने ही नफे के लिए पाक होगा, लौटना अल्लाह ही की तरफ है। क्या पता चला इतना कुछ सुन बोल के भी हर एक को फायदा नहीं होगा। जरा सा सोचें इस पे, गौर करें, तकाबुल है सूरत में, और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं, ना तारीकी ना रोशनी, और ना छांव ना धूप, और जिंदा और मुर्दे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुनवा देता है, और आप इन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में। अल्लाह अगर इस वक्त भी आपको मुझे सुनवा रहे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, खैर होती है ना दिलों में, फिर अल्लाह सुनवाता है। और ये आखिरी हिस्सा तो नोट कर लीजिए, व मान तभी मुस्म मन फिल कबूर, कब्रों में जो लोग हैं, देखिए यहाँ मुर्दे भी निकाल उस कब्र बोला गया, फिर भी लोग कब्रों वालों को जाकर डिस्टर्ब करते हैं। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, हमने ही आपको हक देकर खुशखबरियां सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत ऐसी नहीं होती जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आपको झुटला दें तो जो लोग इनसे पहले हो गुजरे उन्होंने भी झुटलाया था, इनके पास भी इनके पैगंबर मौजज़े और सहीफे और रोशन किताबें लेकर आए थे, फिर मैंने इन काफिरों को पकड़ लिया। यहाँ देखिए वाहिद मुतकल्लिम के सीगे, और भी खौफ आता है ऐसे इस अंदाज में पढ़ के, जब अल्लाह ताला बरह रास्त अपने पर बात लें। फिर मैंने इन काफिरों को पकड़ लिया, पस मेरा अजाब कैसा हुआ। क्या आपने इस बात पर नजर नहीं की कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इसके जरिए से मुख्तलिफ रंगों के फल निकाले, और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं सफेद और सुर्ख, कि इनकी भी रंगतें मुख्तलिफ हैं और कई बहुत गहरे सिया, और इसी तरह आदमी और जानवरों और चौपायों में भी बाज ऐसे हैं कि इनकी रंगतें मुख्तलिफ हैं। अल्लाह से इसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। वाकई अल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त बख्शने वाला है। तो अगर आपको आलिमा बनना है, आलिम बनने का शौक है कहलाने का, तो आलिम की तारीफ लिख लीजिए, इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। खशियत के बगैर जो इल्म मिलता है ना वो बोझ है, तो लिखिए जब इल्म और हिल मिलता है ना फिर खूबसूरत शख्सियत आती है, वरना इल्म सिर्फ बोझ है। जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते और नमाज की पाबंदी रखते हैं, और जो कुछ हमने इनको अता फरमाए इसमें से पोशीदा और ऐलानिया खर्च करते हैं, वैसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में ना होगी। एक सौदेबाजी, एक ट्रेडिंग है आपके मेरे सामने, और इसमें मिलेगा क्या, ताकि इनको इनकी उजरतें पूरी दे और इनको अपने फजल से और ज्यादा दे, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला कदरदान है। और ये जो किताब हमने आपके उस वही के तौर पर भेजी है ये बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह ताला अपने बंदों की पूरी पूरी खबर रखने वाला, खूब देखने वाला है। अब आ गई वो बात जो मैंने शुरू में सूरत के कही थी, उम्मते मुस्लिमा के भी तीन गिरोह बन जाते हैं बाद में। थुम्मा उरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ईना मिन इबादिना, फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया जिनको हमने अपने बंदों में पसंद फरमा लिया। यानी इस वक्त हम सभी कुरान सुन रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, किताब का विरसा हमारे सीनों में मुंतकिल हो रहा है, लेकिन बाद में तीन किस्म के लोग बनेंगे हम सब में से। फिर बस तो इनमें अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, यानी कुछ फायदा नहीं होगा, ना फराइज किए ना कुछ भी अमल ना किया, ना हलाल हराम का फर्क रहा। और बस इनमें मतवसत दर्जे के हैं, यानी चलो कुछ कर लिया, फर्ज कर लिए, सुन्नतें छोड़ दी और कुछ हलाल रख लिया कुछ हराम, यानी मीडियोकर्स मिडिल क्लास। लेकिन जो हाई क्लास लोग हैं, वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिस्मिल्लाह, और बस इनमें अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की किए चले जाते हैं, यही बड़ा फजल है। मेरी जुबान में ये वो लोग हैं जो अगले कोर्सेज को रजिस्टर कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात नए सबीलुल जन्ना के रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। और आपके लिए खुशी की बात है कि इंग्लिश का भी कोर्स वीकेंड्स के लिए अनाउंस हो गया कल। आपके बच्चे क्यों महरूम रहे, आपकी बच्चियां क्यों ड्रेस अच्छा ना पहने, आप क्यों शर्मिंदा हो बार बार अपने बच्चियों बच्चों से, तो वीकेंड कोर्स का पेज बाद में इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देते हैं लिंक। आप इसको जिस हद तक भी फैला सकें फैलाइए ताकि इससे फायदा उठा सकें, क्योंकि हमने अपने बच्चों के साथ जन्नतों में जाना है। कौन सी जन्नतें? अगर साबिकुम बिल खैरात होंगे तो क्या मिलेगा? जन्नात उदनी यदखुलू नहा, वो बागात है जो हमेशा रहने वाले, जिनमें ये लोग दाखिल होंगे। सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और पोशाक इनकी वहां रेशम की होगी, और कहेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया, बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला बड़ा कदरदान है। सवाल कीजिए खुद से, हम कहाँ जाना चाहते हैं? उम्मते मुस्लिमा के तीन गिरोह हैं आयत 32 में। सबसे पहले अगर जालिमुल्ली नफसी को देखें तो हशर की सख्तियां सहेंगे, हिसाब किताब मुश्किल होगा, रंजो गम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुक्तसिद को देख लीजिए तो मिले जुले अमाल का हिसाब होगा, लेकिन दोरा हिसाब हल्का होगा। और साबिकुम बिल खैरात, बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वाले पोजीशन होल्डर्स, फर्स्ट क्लास में सफर करने वाले, अल्लाह हमें दुनिया में साबिकुम बिल खैरात बनाए और भाग के जन्नत में चले जाएं और मैदाने हशर की गर्मी हमें कुछ तकलीफ ना दे सके। आयत 35, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा रहने के मुकाम में ला उतारा, जहां ना हमको कोई तकलीफ पहुंचेगी और ना हमको कोई खस्तगी पहुंचेगी। इसके बरक्स जो लोग काफिर हैं, इनके लिए दोजख की आग है, ना तो इनकी कजा ही आएगी ना ही मर जाएंगे, और ना दोजख का अजाब इनसे हल्का किया जाएगा। हम हर काफिर को ऐसी ही सजा देते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख, और वो लोग इसमें चिल्लाएंगे क्या हमारे रब हमको निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ इन कामों के जो किया करते थे। अल्लाह तआला कहेगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र ना दी थी कि जिसको समझना होता वो समझ जाता, और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था, सो मजा चखो, कैसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। ये जो जुमला है ना, अवलम नुअम्मिरकुम यतज़क्करु फीह, आयत 37 का, उलमा कहते हैं कि ये 60 साल की उम्र है, जिसको 60 से ऊपर की उम्र मिल गई क्यामत के दिन उसका कोई उजर नहीं चलेगा। कितने साल में भी तुझे मौका ना मिला कि तू मेरी बात पढ़ता, मेरी किताब को सुनता, समझता, फिर इस पे अमल करता। अल्लाह इस बुरे अंजाम से बचाए और इस उम्र की पिघलती हुई बर्फ से हम फायदा उठा लें। इन्नल्लाह आलिमुल गैबि समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है आसमानों और जमीन की पोशीदा चीजों का, बेशक वही जानने वाला है सीनों की बातों का, वही ऐसा है जिसने तुमको जमीन में आबाद किया। बस जो शख्स कुफर करेगा इसके कुफर का वबाल इसी पर पड़ेगा, और काफिरों के लिए इनका कुफर इनके परवरदिगार के नजदीक नाराजगी ही बढ़ने का बायस होता है, और काफिरों के लिए इनका कुफर खसारे में बढ़ने का बायस होता है। आप कह दीजिए, तुम अपने करार करदा यानी जिनको तुमने मुकर्रर किया, अपने करारदाद शरीकों का हाल तो बताओ जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, यानी मुझे ये तो बतलाओ कि उन्होंने जमीन में से कौन सा जुस बनाया, यानी अमेरिका, कनाडा, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, कौन सा टुकड़ा इन्होंने बनाया, ग्लोब का कोई एक हिस्सा उंगली रख कर तो दिखाओ, या इनका आसमानों में कुछ साझा है, या हमने इनको कोई किताब दी है कि ये इसकी दलील पर कायम हो। बल्कि ये जालिम एक दूसरे से निरे धोखे की बातों का वादा करते हैं, यकीनी बात है कि अल्लाह ताला आसमान और जमीन को थामे हुए है कि वो टल ना जाएं, और अगर वो टल जाएं तो फिर अल्लाह के सिवा और कोई इनको थाम नहीं सकता, वो हलीम और गफूर है। क्या पता चला इस कायनात में शिर्क की गुंजाइश नहीं। सिर्फ इन आयतों का तर्जमा शेयर कर दीजिए उन भाई बहनों से जो नादानियों में शिर्क कर रहे हैं। और इन कुफार ने बड़ी जोरदार कसम खाई थी कि अगर इनके पास कोई डराने वाला आए तो वो हर एक उम्मत से ज्यादा हिदायत कबूल करने वाले हों। फिर जब इनके पास एक पैगंबर आ पहुंचे तो बस इनकी नफरत ही में इजाफा हुआ। दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने की वजह से और इनकी बुरी तदबीरों की वजह से, और बुरी तदबीरों का वबाल इन तदबीर वालों पर पड़ता है। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जो किसी के लिए घड़ा खोदता है उसमें खुद गिरता है, वही बात है। सो क्या ये इसी दस्तूर के मुंतजर हैं जो अगले लोगों के साथ होता रहा है? बस आप अल्लाह के दस्तूर को कभी बदलता हुआ ना पाएंगे और आप अल्लाह के दस्तूर को कभी मुंतकिल होता हुआ ना पाएंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ है। देखिए, आप सूरज को मशरक की बजाय मगरिब से निकाल सकते हैं, नहीं कर सकते, रात को दिन में ढाल सकते हैं, तो फिर अल्लाह की बाकी शरीयत को मानने में क्या एतराज है हमें? और क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं जिसमें देखते भालते कि जो लोग इनसे पहले हो गुजरे इनका अंजाम क्या हुआ? हालांकि वो कुव्वत में इनसे बड़े हुए थे, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि कोई चीज इसको हरा दे, ना आसमानों में और ना जमीन में। वो बड़े इल्म वाला, बड़ी कुदरत वाला है। और आखिरी आयत देखिएगा आप सूरत की। और अगर अल्लाह ताला लोगों पर इनके अमाल के सबब दादोगीर फरमाने लगता, यानी उनकी पकड़ करता, तो रोए जमीन पर एक जानदार को ना छोड़ता। लेकिन अल्लाह ताला इनको एक मियादे मुअय्यन तक मोहलत दे रहा है। सो जब इनकी वो मियाद आ पहुंचेगी, अल्लाह ताला अपने बंदों को आप देख लेगा। यानी मुझे आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना। तो क्या सीखा सूरत फातिर से हमने? दुनिया की आरजी लज्जतों में खोकर आखिरत की दायमी राहतों को नजरअंदाज ना करो। 2 सेकंड सोचिए। अल्लाह की किताब की तिलावत के फजाइल देखे, अजमत कुरान और मिल्लत बैजा की शान देखी, बुरे लोगों का रुख फरसा हाल देखा, और कस्में खाकर मुकरने वाले जालिमों का हाल देखा। आगे चंद आया सूरह यासीन की इस बारे में है। 36 नंबर की सूरह, 83 मारूफ सूरत है। लोग इस सूरह से प्यार भी बहुत करते हैं और पढ़ते भी बहुत हैं। अमूमन कुरान पाक के वो हिस्से बहुत ही यूज किए होते हैं जहां ये सूरत है, लोग मुर्दों पे पढ़ते हैं। आइए जरा जिंदों को इस किताब की कितनी जरूरत है इस पे गौर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नक लमिनल मुरसलीन, अला सिराति मुस्तकीम, तंजील अल अजीजिर रहीम। यासीन, कसम है कुरान बाहिकमत की, बेशक आप पैगम्बरों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये कुरान जबरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया ताकि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, बस इसी वजह से ये गाफिल हैं। कल मक्का वालों के बड़े भी गाफिल थे, उनकी गफलतों की सजा थी। आज देखिए तो उम्मते मुस्लिमा के भी हालात कुछ इसी से मिलते जुलते हैं। तो क्या पता चला ये कुरान ही है जो गफलतों का इलाज करेगा इंशाल्लाह ताला। इनमें से अक्सर लोगों पर बात साबित हो चुकी, पस ये लोग ईमान न लाएंगे कौन जिनके अंदर तासुब है। हमने इनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, फिर वो ठोड़ियों तक हैं जिससे इनके सर ऊपर को उलट गए हैं। तकब्बुर का पर्दा, अकड़, सरकशी का फितना ये। क्या पता चला जाहलियत उला में तौक थे अना और तकब्बुर के, तासुब के जाहिलानापन के, अंधी तकलीद के। आज जाहलियत उखरा यानी इस्लाम के बाद की जाहलियत में भी हक को कबूल करने के रास्ते के यही तौक है। सब जानते नहीं मानते लोग, बस दफा आप देखिए कि आपकी बात से फायदा उठा लेते हैं आपके नाम से नहीं। एक बहुत बड़ी खयानत किसी ने शेयर की, सेम पावर पॉइंट जो इस वक्त मैं आपके साथ पढ़ रही हूँ। कोई अपनी क्लास में एज इट इज सारा पढ़ा रहा है और उसने सारे नूरुल कुरान के लफ्जों को वाइप आउट किया हुआ है। चोरी के इल्म से हिदायत देंगे लोगों को आप? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। क्या हरजता, मांग लेते ऐसे ही ले जाते। तो याद रखिए ये तासुब है, नाम ना किसी और का आगे चला जाए। क्या करना इन चीजों को, इसी से तो आप देखिए कि फिर असर नहीं है हमारी बातों में। और एक आड़ हमने इनके सामने कर दी और एक आड़ इनके पीछे कर दी, जिससे हमने इनको ढांक दिया सो वो नहीं देख सकते। और आप इनको डराएं या ना डराएं, दोनों बराबर हैं, ईमान नहीं लाएंगे। बस आप तो सिर्फ ऐसे शख्स को डरा सकते हैं जो नसीहत पर चले और रहमान से बेदेखे डरे। बस आप इसको मगफरत और बावक्कार अजर की खुशखबरियां सुना दीजिए, बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे। यकीन रखिए इस बात का। और हम लिखते जाते हैं वो अमाल भी जिनको लोग आगे भेजते हैं, और इनके वो अमाल भी जिनको पीछे छोड़ जाते हैं। और हमने हर चीज को एक वाज़े किताब में जब्त कर रखा है। अगर ये बात याद रहे ना, तो कम अज कम इंसान इल्मी खयानतों का मुर्तकिब तो ना हो। हिन्ना नाहन नौशिल मऊता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम। आज इंशाल्लाह आपके साथ ये लेक्चर शेयर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला ये मौजू है, और इसको 20 बार हमने अलग से लेक्चर्स की सूरत में भी किया। अल्लाह हमें इसका यकीन दिलाए। हर जगह हमारी स्टैम्प्स लग रही हैं, मोहरें लग रही हैं, जिन हाथों से मिटाते हैं, जिन चीज़ों से लिखते हैं, सब लिखा जा रहा है। असल बात यह है कि हमें इसका यकीन नहीं है। तो इंसान शैतान के पीछे लगकर दुनिया में भी अपने अमाल ज़ाया करता है और आखिरत में भी। लोगों की अक्सरियत शैतान के पीछे लगकर खुद को जहन्नुम का ईंधन बना लेती है। माँ कद्दमू वो अमाल जो इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, और आसारहुम वो अमाल जिनके अमली नमूने अच्छे या बुरे इस दुनिया में छोड़ता है। और आसार में आपकी औलादें भी हैं, आपकी निशानियाँ हैं। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है मिश्कात में 198। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इंसान जब मर जाता है तो इसका अमल ख़त्म हो जाता है, मगर 3 चीज़ें बाकी रहती हैं। सदका जारिया, इल्मे नाफे, के लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और नेक औलाद जो वालदैन के लिए दुआ खैर करें। सही मुस्लिम की रिवायत है ये। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचिए अपने पीछे क्या छोड़ के जा रही हूँ। आज इस हदीस पे आपने बाद में गौर करना है। और आप इनके सामने एक मिसाल यानी एक बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए, जब किस बस्ती में कई रसूल आए, जब हमने इनके पास 2 को भेजा, सो इन लोगों ने अव्वल को छुटलाया, फिर हमने तीसरे से ताईद की, फिर तीनों ने कहा कि हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं। इन लोगों ने कहा, तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो, रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की, तुम निरा झूठ बोलते हो। इन रसूलों ने कहा, हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए। अल्लाह अकबर। और हमारे जिम्मे तो सिर्फ वाजे तौर पर पहुंचा देना। उन्होंने कहा, हम तुमको मनहूस समझते हैं, अगर तुम बास ना आए तो हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुंचेगी। इन रसूलों ने कहा, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, क्या इनको नहुसत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए, बल्कि तुम हद से निकल जाने वाले लोग हो। और एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया, कहने लगा है, मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो, ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते और वो राह रास्त पर हैं। अल्लाह अकबर। 3 रसूल आए, लोगों ने झुटला दिया। आज हम रोते हैं, हाय नबी के दौर में होते तो क्या होता, शुक्र कीजिए नहीं है। नबी एक नहीं 3 रसूल आए, तीनों को झुटला दिया, और कैसे फिर जब गरीब के झुटलाएं तो अल्लाह दूर से मदद लाता है, इसको हम अगले पारे में देखेंगे। अभी तक 21 आयतें सूरह यासीन की पढ़ी, क्या सीखा? सिरात मुस्तकीम की वजाहत है ये, अल्लाह और उसके रसूल की दावत, शबे हिजरत और मुनकरीन के सर्रे खाक। अल्लाह के नबी ये आयतें पढ़ते हुए निकल गए और किसी को पता भी ना चला। एक किस्सा पारीना बन गए वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की दावत को ना माना। और अम्बिया और रसूल से मुनकरीन का रवैया कैसा होता है, और मुबल्लिगे हक की लोगों को तबलीग करना, ये है वो खूबसूरत काम जो अल्लाह ने आपके मेरे नसीब में किया। अल्लाह इसका हक अदा करवा ले, नेकियां करते करते गुनाहों के मुर्तकिब न हो जाएं। पारा पूरा हुआ, जेम्स ले लीजिए, गोल्डन वर्ड्स। हमने इस बारे में तबर्रुज और जाहिलियत उखरा का फितना देखा, यानी कैसे इस्लाम आने के बाद भी जहालत का फितना हमारे सरों पे मुसल्लत है। पर्दे के अहकामात बहुत वजाहत से देखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीजीन हैं, इन पे दुरूद व सलाम भेजना सीखा। उम्मत मुस्लिमा के 3 गिरोहों में से साबिकुम बिल खैरात बनने का इरादा किया। कलमे तैयबा और अमल सवाले ही कबूल होगा क़यामत के दिन, और तकवा और खशियत इलाही ही असल में मतलूब है, और हजरत दाऊद की तरह अब्द मुनीब बनना है। अल्लाह में इसकी तौफीक दे। फितना तो बहुत बड़ा है तबर्रुज और जाहिलियत उखरा, लेकिन इसका हल ले लीजिए। तरक्की और मॉडर्न होने का ये नाम नहीं है, बल्कि ये एक संगीन गुनाह और फितना है। बल्कि आप जिसको मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, लोगों को फील कराइए कि ये जहालत के काम है। इस फितने से आगही हासिल करते हुए अपना मुहासबा करना है। खानदान बिरादरी जाहिलाना गैर इस्लामी रस्म और रिवाज से अपने आप और दूसरों को बचाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी और शरीयत इस्लाम की पाबंदी करनी है, अल्लाह के हुक्मों को मानते हुए। जदीद दौर की जाहिलियत और तबरुज के फरोख के सिलसिले में सोशल मीडिया के किरदार को समझना है, और वहां तक अपनी आवाज को पहुंचाना है मुहज्जब तरीके से। इन तमाम खुराफात में वक्त बर्बाद करने की बजाय कुरान पाक से अपना ताल्लुक जोड़ना है, और हदीस और सुन्नत से। लोगों के दबाव में आकर शरीयत छोड़कर शहावात और शैतान की पैरवी नहीं करनी, तक्वा और खशियत इलाही पैदा करना, दुश्मनान इस्लाम की साजिशों को समझना और मगरबी माशरे की जाहिलाना तहजीब से मुतासिर नहीं होना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्महातुल मोमिनीन के उसवे पे अमल करना, तज़किया नफ्स, पर्दे के खास अहतमाम, औरत और मर्द के इख्तलात यानी मिक्स्ड अप कल्चर के बगैर पाक साफ माशरे से ही उम्मत को उरूज हासिल होगा। इसको समझ लीजिए, जितना जल्दी ये कर लेंगे उतनी मुसलमानों को इज्जत मिलेगी, और सबसे बड़ी बात पिछली जिंदगी पर तौबा और आइंदा के लिए इस्तकामत और हिदायत की दुआ करनी है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तवाबुर रहीम।